परमहंस प्रभुकाचार्य अष्टोत्तरश्रीमते श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुकाचार्य अष्टोत्तरश्रीमते सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर स्वशादि गौर भक्तविंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूर्तेर्महद्वीर्यैर्मा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूषु पुरुष भुङ्क्तेर्गुणान् षोडश षोडशात्मक सुलङ्कशिष्ट भगवान् वचांसि मे। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। யம் பிரம்மா வருடேந்திர ருத்ர மருத ஸ்துவந்தி திவ்யஸ்துவைர் வேதே சாங்க பத க்ரமோபனிஷதி காயந்தி யம் சாமகா தியானாவஸ்தித தத்கதேன மனுஷா பஷ்யந்தி யம் யோகினோ யஸ்யாந்தம் ந விதோ சுரா சுரகணா தேவாய தஸ்மை நமஹ. குருவே கௌர சிந்தாய ராதிகாய ததாலே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமஹ. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. தோ ஆப் சப் பக்தோ கா ஹார்திக் ஸ்வாகத் ஹை இஸ் சண்டே ப்ரீதி போஜ் காரியக்ரம் மே. தோ ஆஜ் ஹம் இஸ் சண்டே ப்ரீதி போஜ் காரியக்ரம் மே ஹம் குச் விசேஷ சீஜோ கி சர்ச்சா கர்னே வாலே ஹை. आज का एसएमएस किसको किसको आया था? एसएमएस में क्या लिखा था? कुछ ही लोग पढ़े और रेगुलर मैसेज है इसलिए कोई पढ़ाता नहीं है. संडे का मैसेज कर दिया था तो मैं उसमें मेंशन करवाया था कि बुक्स और पेन लेके आइएगा. तो कौन कौन लेके आए? मतलब सबको मैसेज गया नहीं या फिर पढ़े नहीं? मैसेज किस किस किसको आया? इतने इतने लोग ही आया, बाकी लोग का नंबर नहीं है यहाँ पे. ठीक है, कोई बात नहीं. अगर पेन रहेगा तो आपको पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना उसमें भी लिख सकते हैं. तभी अगला एक घंटा मैं आपको तकलीफ दूंगा, आप लोगों को मुझे सहन करना पड़ेगा क्योंकि मंदिर में सारे भक्त लोग जितने भी सब ब्रह्मचारी सब लोग यात्रा पे गए हुए हैं, ट्रिप पे. तो इसलिए मैंने प्रयास तो किया कि मुझे नहीं सहन करना पड़े आप लोग को, लेकिन वो कहीं जैक लगा नहीं, मतलब कोई आ नहीं पाया. इसलिए मैं सोचा कि चलो मैं ही परेशान करता हूँ. तो आज डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो आज हम भगवान के चरण कमल के विषय में चर्चा करेंगे. सबको मिला कंप्लीट? सबको मिल गया? इस साइड भी दीजिए. अगर कम होगा तो एक दो तीन लोग के बीच में एक कर लीजिए, शायद कम पड़ सकता है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो भगवान का जो चरण कमल है उसको लोटस फीट कहा गया है. एक्चुअली हमारे शास्त्रों में और विशेष करके जिन बहुत हमारे जो आचार्य हैं इन चरण कमलों की जो महिमा है वो बहुत गाते हैं. वास्तव में हमारे जीवन का जो परम उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वह भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करना है. भगवान के चरण कमल की प्राप्ति करना है. इसलिए कभी जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो चरणों से दर्शन करते हैं. हम दर्शन वास्तव में भगवान का क्या कर सकते हैं? ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में कि भगवान का दर्शन करने के लिए प्रेमांजनक श्रुति भक्ति विलोचनेना, जब तक आंखों में प्रेम के अंजन नहीं लगाएंगे, जब तक आंखों में प्रेम उत्पन्न नहीं हो चुका है तब तक हम भगवान के दर्शन करना असंभव है. इसलिए हमारे आचार्य गण ज्यादातर इन चरणों की महिमा को बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि चरण की क्या महिमा है और हमको चरण से दर्शन करते 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 और उसके बाद भगवान के वक्षस्थल, उसके बाद मुख कमल के ऊपर जाना चाहिए. और कभी कभी कोई भक्त ऐसे होते हैं जो कि केवल चरण कमलों का ही स्मरण में उन्होंने अपना जीवन निकाल देते हैं. वास्तव में ये परम सिद्धि है भगवान के चरणों में अपने जीवन को बिता देना. तो इन चरण कमलों के विषय में हम चर्चा करेंगे आज. तो ये जो भगवान का जो चरण कमल है, बार बार भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याधीमा नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरे चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करो. तो ये बहुत हम भक्तों के जीवन में, हम विशेष करके हम गौड़ीय भक्तों के जीवन में ये जो भगवान का जो चरण कमल है ना वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखता है ना. भगवान का जो उधर सटारी रखा हुआ, जो अभी आप लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया ना, उसके ऊपर देखिए भगवान का चरण चिन्ह है ना. उसमें अभी आप लोग के हाथ में जो प्रिंट आउट आया ना, उसमें देखेंगे जितने चिन्ह है भगवान के चरण चिन्ह में टोटल 19 चिन्ह है। भगवान के चरण कमल में दोनों चरणों में टोटल मिलाकर कितने चरण चिन्ह है? 19। इस चरण चिन्हों का वर्णन करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। श्री रूप चिंतामणि करके ग्रंथ है, रूप चिंतामणि ग्रंथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन चरण कमलों के चरण कमलों में जो चिन्ह है उसके बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किस प्रकार से इन चिन्हों का वर्णन किया हुआ है उनके अनुसार ही हम एक एक करके इन चिन्हों का वर्णन करेंगे। तो क्योंकि मैं इसलिए बोला कि सब लोग पेन और बुक लेके आइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम रोज चरणों का तो दर्शन करते हैं, लेकिन उन चरणों की क्या महिमा है हमको पता होना बहुत जरूरी है। हमको चरण दर्शन करते समय हमको क्या किन चीजों का स्मरण करना चाहिए, क्या किन बातों का स्मरण करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हम तो रोज दर्शन के लिए आते हैं, हम इतने सालों के भक्त हो गए हैं, इतने साल हो चुके हैं मुझे, कभी कभी हमारा उत्साह डाउन होने लगता है कि अरे इतने साल तो निकल गए और वही के वही है, रात भर नौका चली लेकिन वही के वही रह गया। क्या क्या कारण है? क्योंकि वो लंगर जो है ना वो छुड़ाया नहीं था, इसलिए वही का वही रह गया। इसलिए हम रोज तो दर्शन करते हैं इन चरणों का, लेकिन इन चरणों की जब महिमा हमको नहीं पता रहेगा तो इन चरण कमल का दर्शन करने का सही लाभ तो मिलेगा लेकिन सही लाभ को नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो भगवान के चरण कमल में टोटल 19 चिन्ह है ना। देखिए चरण कमल इतना महत्वपूर्ण है, उस समय की घटना याद करिए कि रामायण में जब रावण ने माता सीता का जब हरण कर लिया, उस समय की बात है कि जब ही रावण माता सीता का हरण करके लेके जाने लगा लंका, तो उस समय माता सीता ने अपना बहुत प्रयास किया उस रावण के चंगुल से बचने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन जब ही देखा कि उसका प्रयास अभी विफल हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, अपने तन पे जितना भी ज्वेलरीज था, गले का हार, कंगन, अंगूठी, नाक का पहनने वाला, जितने भी थे वो आभूषण को निकाला, उतार कर एक पोटली में बांध कर फेंक दिया। उनको लगा कि जब भी प्रभु राम हमको ढूंढते हुए निकलेंगे तो हो सकता है कि ये पोटली मिले, ताकि वो उस रास्ते से और आगे आए मुझे ढूंढते ढूंढते बचा छुड़ा के लेके जाने के लिए। तो जब भगवान रामचंद्र, आप लोग उस कथा से मैं डिटेल नहीं जाऊंगा लेकिन मैं कुछ बात को बताना चाह रहा हूं, इसलिए मैं संक्षिप्त में इस कथा को बताऊंगा कि जब भगवान रामचंद्र जी उस रास्ते से निकल रहे थे ढूंढते ढूंढते माता सीता को, तब उनको वो पोटली प्राप्त हुआ, उन आभूषणों का जो पोटली था वो प्राप्त हुआ। और जैसे ही भगवान रामचंद्र को ये पोटली प्राप्त हुआ और भगवान रामचंद्र तुरंत ही बहुत आनंदित होने लगे कि सीता माता को यहाँ से लेके कोई गया, क्योंकि ढूंढ रहे थे वो जंगल में, पूछ रहे थे कि क्या आपने सीता को देखा है, क्या आपने सीता को देखा है, हमारी सीता को देखा है आपने, पेड़ पौधे सारे पूछ रहे थे भगवान रामचंद्र। तो इस प्रकार से ढूंढते ढूंढते जब उनको जब प्राप्त हुआ तो बड़े उत्साह से वो लक्ष्मण को वो सारे गहने दिखा रहे थे, बहुत उत्साह से लक्ष्मण को दिखा रहे थे, देखो लक्ष्मण ये सीते का हाथ का कंगल है और ये देखो चैन है उसका, इस प्रकार से सब एक एक करके वर्णन कर रहे थे। और उस समय लक्ष्मण जी बहुत चुप होकर सुन रहे थे नीचे मुंडी करके। प्रभु राम जैसे ही वो वर्णन करके, उन आभूषणा का वर्णन करके उतना उत्साह दिखाते हुए जब उनकी बातें समाप्त हुई तो उस समय लक्ष्मण जी बोलना चालू किए, प्रभु मुझे क्षमा करिए क्योंकि इन आभूषणों को मैं बिल्कुल पहचानता नहीं, क्योंकि मैंने सीता माता के चरण से ऊपर कभी दर्शन किया ही नहीं। तो ये जो दास की भावना है, लक्ष्मण जी बताते हैं कि मैंने माता सीता का चरण की दर्शन से ऊपर कभी किया है, केवल चरणों में ही हमेशा माता सीता का दर्शन किया हमने, प्रभु इस आभूषण में जो ये नुपुर है ना, इस नुपुर को मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि इस नुपुर का रोज मैं दर्शन करता था, तो इसलिए प्रभु ये माता सीता का ही नुपुर है। तो इस प्रकार से जो एक दास होता है ना, दास का जगह एक्चुअली ना भगवान के केवल चरणों में ही है, उस दास का जगह भगवान के चरणों में है, चरण से ऊपर है ही नहीं एक्चुअली, ये हमारा गौड़िया मूड है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में भी जब भी नंद महाराज कृष्ण छोटे बालक थे तो नंद आंगन में नंद महाराज ने कई बार ऐसा देखा कि वो चिन्ह पड़ा हुआ है, ये जो चिन्ह आप लोग के हाथ में दिख रहा है भगवान के चरण कमलों का में, तो ये सारे चिन्ह कभी कभी छाप पड़ जाता था आंगन में, तो उस समय नंद महाराज यही यशोदा से बोलते थे कि यहाँ पे निश्चित रूप से विष्णु आके गए हुए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि विष्णु का नहीं है, किसका है, स्वयं उनके कृष्ण का है, तो उनके ही बालक, उनके ही पुत्र का है। लेकिन तो वो तो वात्सल्य प्रेम था उनका, वो अपने कृष्ण अपने बालक को, ऐसी कई घटनाएं घटी लेकिन वो कभी भी भगवान के रूप में नहीं स्वीकार किए, यही बोले कि विष्णु की कृपा है, विष्णु आए थे, विष्णु यहाँ पे आते हैं, आते जाते हैं यशोदा, क्योंकि इस आंगन में जो है ना इस चरण का चिन्ह पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो चरण है एक भक्त के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखता है। तो कृष्ण के चरण चिन्ह में टोटल, चरण में टोटल 19 चिन्ह है। तो सबसे पहले हम एक चरण कमल का लेते हैं, उसका वर्णन करेंगे और उसके बाद दूसरे चरण का। तो कृष्ण के सबसे पहले हम राइट दाएं चरण में कितने चिन्ह है, कृष्ण के दाएं चरण में टोटल 11 चिन्ह है, गिन लीजिए फटाफट 11। हाँ, ये पेपर ऐसा रखे है ना, तो ये जो लेफ्ट वाला है ना वो राइट चरण है, लेफ्ट वाला जो राइट चरण है। तो भगवान के दाएं चरण में टोटल 11 चिन्ह है, और उसके बाद उनके बाएं चरण में टोटल 8 चिन्ह है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दाएं चरण का वर्णन करेंगे और उसके बाद फिर बाएं चरण का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले दाएं अर्थात राइट चरण जो चिन्ह है, चरण में सबसे पहला जो चिन्ह है वो अंगूठे के नीचे जौ का चिन्ह है, अंगूठे के नीचे जहां से अंगूठा फोल्ड होता है, देखिए वहां पर मार्क भी है, जौ लिखा हुआ है और एरो मार्क है वहां पे, है ना। तो अंगूठे के नीचे भगवान के चरण में अंगूठे के नीचे जौ अर्थात धान्य गेहूं का चिन्ह है। तो सनातन गोस्वामी पाद इस चिन्ह को लेके यह वर्णन करते हैं कि भगवान का जो चरण को, भगवान के जो आश्रय को ग्रहण कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होगा, कभी भी धान्य की, कभी वो भूखा नहीं रहेगा। वैसे भी इस संसार में भगवान ने जिसको भी, ब्रह्मा जी ने जिसको भी शरीर प्रदान किया है और भगवान निश्चित रूप से उसका पालन पोषण तो करते हैं, इस संसार में कोई भूखा नहीं रहता है। एक भिखारी भी अपना पेट तो मांग के भर ही लेता है ना, इस संसार में कोई भूखा नहीं रहता है। लेकिन जो भगवान के आश्रय, भगवान का जो चरण को ग्रहण कर लिया है, उनके आश्रय में चला गया है, तो उसके जीवन में वो कभी भी भूखमरी, कोई इस प्रकार के धन और धान्य की कमी नहीं होगा। इसलिए देखिए जो भी कृष्ण भावना में जुड़े लोग हैं ना, कभी भी उनसे भिखारी अगर उनसे कुछ मांगते हैं धन को तो कभी नहीं लेते हैं। क्यों नहीं देते बताएं? क्योंकि उनको वो बोलते हैं कि आप मंदिर आइए, मंदिर बुलाते हैं उनको, या तो उनको प्रसादम देते हैं, पैसे नहीं देते हैं, उनको मंदिर बुलाते हैं। और मंदिर बुलाकर उसके पीछे यह रीजन है कि मंदिर जब बुलाएंगे तो वो क्या करेगा, भगवान का दर्शन करेगा, प्रसाद तो प्राप्त ही होगा उसको, लेकिन भगवान का दर्शन करेगा, भगवान के चरणों का दर्शन करेगा। जब वो चरणों का दर्शन कर लेगा तो निश्चित रूप से उसकी जो समस्या है वो परमानेंट हल हो जाएगी। हम उसको कुछ पैसे देंगे तो एक दिन उसकी भूख जाएगी, लेकिन भगवान का जब शरण ग्रहण कर लेगा वो, तो निश्चित रूप से ये समस्या उसके जीवन से हट जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो जौ का चिन्ह है ये इंगित करता है कि भगवान के जो शरणागत है वो कभी भी बिल्कुल भूखे नहीं रहते हैं, उनके घर में इसकी कमी तो कभी नहीं होती है। और जो जितना स्मरण करेगा, जितना जो स्मरण करेगा उसको उतना प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा, है ना। हम अगर केवल संडे टू संडे स्मरण करेंगे तो हमको उतना ही प्राप्त होगा। इसलिए देखते आप, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूं कि मंदिर में ही देख लीजिए, जितने भी फुल टाइम ड्यूटी है भगवान के की सेवा में दिन भर लगे रहते हैं, है ना, मंदिर में रहते हैं, भगवान के चरण कमलों में दिन भर उनका सेवा रहता है। तो कभी हुए उनके प्रसादम की, खाने की कमी हुई? कभी कभी नहीं होता है। सुबह मंगला भोग होता है, उसके बाद बाल भोग होता है, उसके बाद राज भोग होता है, उसके बाद वैकालिका भोग होता है, उसके बाद संध्या भोग होता है, उसके बाद नाइट भोग होता है। इतने सारे भोग अवेलेबल रहते हैं, है ना, उनको कभी भी कभी। तो जो जितना ज्यादा ध्यान करेगा उतना ज्यादा प्राप्त होगा। तो हमको ज्यादा प्राप्त करना तो क्या करना है, गधा मजदूरी करना है? नहीं, क्या करना है, भगवान के चरण में अपने ध्यान को लगाना है, उनके चरण का स्मरण करना है, ऑटोमेटिक प्राप्त होगा। तो जो जितना ध्यान करेगा उतना प्राप्त होगा। अभी हम जैसे लोग फैमिली में जब रहते हैं तो घर पे ज्यादा स्मरण नहीं कर पाते हैं तो हमको उतना ही प्राप्त होता है। हाँ, घर में देखिए आपको खुद ही अनुभव होगा, एक सब्जी बनता होगा, दो सब्जी बनता होगा ज्यादा से ज्यादा। कभी कभी राइस दाल पे भी गुजारा कर लेना पड़ता है, और कभी कभी वो भी पत्नी का मूड अच्छा हो तो कभी कभी फिस्ट खाने के लिए मिलता है ना, नहीं तो फिर उस दिन भूखा ही निकलता है। हाँ, फिर मंदिर का आता तो चलो मंदिर में जाके खाते है ना। तो जितना जो ध्यान करेगा उतना उसको प्राप्ति होगा। तो इसलिए कहते हैं कि आप कृष्ण के नाम, कृष्ण का नाम लीजिए, कहावत है, आप कृष्ण के नाम पे तो कृष्ण आपके काम पे, आप कृष्ण का नाम लीजिए तो निश्चित रूप से कृष्ण हमारे काम पे रहेंगे। ये टेक्निक है, हमको ये विश्वास होना चाहिए कि अवश्य रक्षवे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण हमारी अवश्य रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए हमको। अगर ये विश्वास है तो निश्चित रूप से कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, निश्चित रूप से वो पालन करेंगे हमारा। लेकिन हमारा विश्वास क्या होता है, इतना है नहीं, कोई समस्या है तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करने में, जब सब जगह से खत्म हो जाता है, सब जगह से हार जाते हैं, तब आते हैं मंदिर की, प्रभु आप ही देखिए क्या करना है। अरे बुद्धिमान व्यक्ति हो जाता है, यजंती ही सुमेधस, भागवत में वर्णन है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना वो पहले ही कृष्ण के शरण को पकड़ के बैठता है। कृष्ण हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, कृष्ण का अगर पूर्ण रूप से अगर भजन करते हैं, उनके चरणों में अपने आप को सरेंडर रखते हैं तो निश्चित रूप से कृष्ण हमारी। उस समय महाभारत की घटना में देखिए कि एक नाई, आप लोग कथा सुने रहेंगे कि एक नाई जो है दुर्योधन की सेवा में जाया करता था, उसके चरण को मसाज करने जाता था। और वो नाई जो है भगवान का भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था भगवान का, लेकिन नाई था और उसका सेवा जो था वो दुर्योधन के लिए मसाज करना, ये सेवा था उसका, वो सेवा समझ के उस जाके करता था, अपना नौकरी करता था। एक दिन की घटना है कि वो नाई बीमार पड़ गया और उसको इतना फीवर आ गया, लेकिन दुर्योधन की सेवा में जाना, अभी नहीं जाएगा तो फिर जानते हैं दुर्योधन क्या करेगा, उसको अच्छी तरह से मालूम था। उसने बहुत प्रयास किया कि नहीं मैं जाऊंगा ये करके, लेकिन हेल्थ इतना उसका वीक हो चुका था कि वो प्रयास करने के बाद भी नहीं जा पाया। और उसके एक तो हेल्थ खराब, उसके बाद दुर्योधन का टेंशन, और अभी क्या करे हो, तो अभी नहीं जा पाया तो भगवान को प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप ही हमारी रक्षा करिए, मैं बड़ी मुश्किल घड़ी में पड़ गया हूं, अभी मैंने तो बहुत अपने तरफ से प्रयास किया लेकिन नहीं जा पाया उसकी सेवा में। तो सोचिए, प्रबल भक्त के पाले पड़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। एक कवि लिखते हैं ऐसा, प्रभु उस भक्त के अधीन होके क्या किए, नाई का वेश धारण करके जाके दुर्योधन का चरण मसाज किया उन्होंने, विचार करिए। और दुर्योधन उस दिन का मसाज देखकर दुर्योधन तो बड़ा खुश हो गया, बोला नाई तुमको क्या हुआ, आज तुम लगता है बहुत प्रसन्न हो, आज तक ऐसी सेवा नहीं किया तुमने, इतना अच्छा मसाज आज तक तुमने हमारा नहीं किया था, लेकिन आज क्या विशेष बात है। लेकिन उसको गधे को क्या पता कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के जो मालिक है उसके चरण दबा रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान के जब हम चरणाश्रित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमको भगवान पूर्ण रूप से प्रदान करते हैं, हमको विश्वास होना चाहिए, है ना। इतना एबिलिटी दे देंगे। एक बार का मैं मीरा रोड में था, तो दोपहर का राजभोग खाया, तो राजभोग प्रसादम के बाद एक भक्त केला लेके आया, अब फूल मैं प्रसाद पा चुका था तो केला लेके आए, कौन सा, वो साउथ इलायची केला। बोले प्रभु जी कुछ थोड़ा सा केला खा लीजिए, बहुत स्पेशल केला है, इलायची केला है, थोड़ा खा लीजिए। मैं बोला नहीं, अभी प्रसाद पाया, मैं अभी राजभोग खाया, अभी बिल्कुल जगह नहीं है। तो उसने बोला कि अच्छा प्रभु जी एक बात मुझे बताइए, केला के लोग मैं कई लोग के पास तक रिटर्न आ चुका, कोई खा ही नहीं रहा है। मैं बोला क्या बात कर रहे हो। बोला हाँ, सब लोग मना कर देते हैं, केला खाता ही नहीं कोई। मैं इससे पहले भी कई बार ट्राई किया, कई लोग को केला देने के लिए, खाते ही नहीं केला। क्यों नहीं खाते, इस्कॉन वाले केला नहीं खाते क्या? बोला हाँ नहीं खाते, क्योंकि उसको छीलना पड़ता है ना, इसलिए नहीं खाते। इतना सारा भोग अवेलेबल है कि अभी कहाँ केले के लिए भूख लगता है, कहाँ जगह रहता है कि नहीं, उसमें कौन छीलने में टाइम व्यर्थ करेगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अगर हम जितना भगवान के चरण कमलों का स्मरण करेंगे निश्चित रूप से भगवान हमको उतना नॉलेज। और गीता में भगवान कह ही दिया, जिस प्रकार से आदान प्रदान होता है मैं उसी प्रकार से उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से ये जो जौ, इस प्रकार ये जो जौ का जो चिन्ह है यह दर्शाता है कि अगर हम भगवान के चरण के आश्रित हो जाएंगे तो हमारे घर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होगा, मतलब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। अभी दूसरे निष्ठ, दूसरा क्या है, दूसरा चिन्ह है जो भगवान के दाएं साइड, दाएं चरण में, राइट में चक्र का चिन्ह है। देखे चक्र, देखे एक्चुअली संस्कृत में लिखा हुआ हो, चक्रम लिखा हुआ है, मिला तो ये चक्र, ये जो चक्र का जो चिन्ह है यह दर्शाता है कि ये जो चक्र है, जो भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान के चरणों का जो आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, भगवान उन भक्तों की रक्षा करते हैं। इसका बात एक्चुअली विशेषकर श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में ना, एक्चुअली गोपियां गोपी गीत में इस बात का वर्णन करते हैं। गोपियां जब गोपी गीत कर रहे थे तो भगवान के चरण कमलों का वर्णन कर रहे थे, तो उस चरण कमलों का वर्णन करते करते वह एक गोपी गीत में गाते हैं, प्रणत दे ही नाम पाप कर सनम त्रिणाचरानुगम श्री निकेतनम फणिर्पणार्पितम ते पदाम्बुजम क्रीडुकुचे सुना क्रिंदेचयम। ये गोपियां भगवान के चरणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रणत दे ही नाम पाप कर्षणम, हे प्रभु ये आपके जो चरण है ना ये पाप को नाश करने वाले हैं। हाँ, कैसे वो बताते हैं कि फणिर फणार्पितम ते पदाम्बुजम, कि जो आपका जब चरण है ना कालिया नाग की जब सिर के ऊपर पड़ा तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए, और ऐसी जो चरण है जो कि इतना कोमल है, उनका वर्णन वहां पे बहुत विस्तार रूप से उस चरण का वर्णन हुआ है, लेकिन संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगा कि गोपियां वर्णन करते हैं कि ये जो चरण आपके जो कोमल चरण है ना जो कि कालिया नाग के ऊपर पड़ते ही उसके सारे पाप धुल गए, पाप नष्ट हो गए, ऐसे चरण को हे प्रभु, ऐसे चरण को आप हमारे अस्तनों पर रखिए, और हमारा जो हमारे अंदर जो जितने भी विकार है, काम क्रोध कलमश से भरा हुआ है, इन विकार को दूर करिए प्रभु। तो इस प्रकार से गोपियां इन चरणों को वर्णन करते हुए बहुत सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में वर्णन करते हैं। और विशेष करके ये जो चक्र है ना, सुदर्शन चक्र भगवान का, यह क्या करता है, जैसे कि सुदर्शन जी हमारे जगन्नाथ जी के बाजू में सुदर्शन जी विराजमान है ना, उनका प्रणाम मंत्र क्या है, किसको किसको मालूम है, हाँ किसी को नहीं मालूम, बोलिए, वो तो जगन्नाथ जी का है, सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञान तिमरांधस्य वैकुंठा द प्रदर्शक। बताइए सुदर्शन जी यहाँ विराजमान है डेली, और हम आते हैं प्रणाम भी करते हैं, हमको ये इच्छा व्यक्त करना चाहिए कि उनका क्या प्रणाम मंत्र है, उनसे क्या प्रार्थना करते हैं, उनका प्रणाम तो बोलना चाहिए ना। सुदर्शन महाज्वाला, सुदर्शन जो है इस चक्र के बाद यहाँ पे आ रही है, भगवान के चरण चिन्ह में जो चक्र है, तो ये जो सुदर्शन, सुदर्शन महाज्वाला एक ज्वाला के समान है, कोटि सूर्य समप्रभा, कोटि कोटि सूर्य के समान है, क्या करता है, अज्ञान तिमिरांधस्य, ज्ञान को दूर करता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, वैकुंठाब्द प्रदर्शक, ये वैकुंठ की प्राप्ति कराता है। ये जो चरण है, ये जो चक्र है भगवान के चरण में जो चक्र है ना, ये वैकुंठ को प्राप्त कराता है, और विशेष करके ये जो चक्र है ना भक्तों के चारों बाजू आजू बाजू ये चक्र घूमता रहता है। एक्चुअली आप भागवत का वह प्रसंग देखिए जहां पे अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि का जो प्रसंग है, जहां पे दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के जब चरणों में अपराध किए, हाँ उनको मारने के लिए जब गए दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज को, तो तुरंत सुदर्शन वहां पे प्रकट हो गया भगवान का, और तुरंत जो दुर्वासा ऋषि उनको श्राप देने में इतने एक्सपर्ट, उसी दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन क्या किया, उनके पीछे उनको मारने के लिए दौड़ा लिया, और भागने लगे, क्योंकि भगवान क्या करते हैं पता है, भगवान ने इस सुदर्शन को स्पेशल एक आदेश देकर रखा हुआ है कि जब भी हमारा कोई भक्त कष्ट में हो, समस्या में हो, तब तुम कभी भी मेरे से परमिशन मत मांगना, कभी भी मेरे से परमिशन मांगना, तुरंत निकल जाना उसकी रक्षा के लिए। ये भगवान ने आदेश दे के रखा हुआ है सुदर्शन को कि तुरंत निकल जाना, बिल्कुल वेट मत करना, बिल्कुल इंतजार मत करना, तुरंत निकल जाना। तो ये जो सुदर्शन है विशेष करके जो भक्त है उनकी रक्षा के लिए हमेशा भक्तों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तभी प्रश्न उठता है कि प्रभु हाँ हम तो भक्ति कर रहे हैं, बड़ी समस्याएं हैं, सुदर्शन तो आता नहीं बचाने के लिए। तो उत्तर में ही है ना कि सुदर्शन से आने से पहले हम जवाब दे देते हैं, कोई हमको गाली दिया ना उसका इंस्टेंट तुरंत रिप्लाई करते हैं, हम सहन करते हैं। अम्बरीश महाराज ने सहन कर रहे थे, उस सहन जब ओवर हो गया तो सुदर्शन आ गया, लेकिन हम क्या करते हैं तुरंत ही एक दूसरे से तुरंत लड़ पड़ते हैं, हम तुरंत अपना बचाव करने के लिए प्रयास कर लेते हैं, फिर सुदर्शन का आने का मौका ही नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो सुदर्शन है, ये सुदर्शन जो चक्र है, जो चिन्ह है, यह दर्शाता है कि तो कि कृष्ण के चरणों का ध्यान प्रणाम, उनको प्रणाम करने से ये जो भक्त के जीवन में जितनी समस्याएं आती निश्चित रूप से उसको भगवान खत्म कर देते हैं सुदर्शन चक्र के माध्यम से। और देखिए भगवान के चरणों का जो शरण लेने की बात आई है, ये जो चिन्ह है ना, चिन्ह यह इंगित करता है कि शरण ग्रहण करेंगे तो क्या 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 चीजें होती है, ये चिन्ह इंगित करता है ना। तो शरण को ग्रहण करते हैं तो देखिए रामायण की एक कथा और मैं बता रहा हूं कि रामायण में कि जब भी रावण ने विभीषण को लात मार के भगा दिया, विभीषण ने बहुत सारा उपदेश दिया रावण को, है कि नहीं, कि राम का शरण ग्रहण कर लो, लेकिन उसने सुना नहीं। रावण ने क्या किया, अपने ही भाई विभीषण को लात मार के लंका से बाहर निकाल दिया। और जब लात मार के निकाल दिया तो विभीषण निकल पड़े प्रभु राम के चरण को शरण, मतलब उनके शरणागत होने के लिए। जब वहां से निकल रहे थे तो कुछ ही रास्ते पे आए थे, अभी भगवान राम का इधर शिविर लगा हुआ था, और जैसे ही ये बात पता चला गुप्तचरों से कि विभीषण एक राक्षस लंका से निकल के हमारे शिविर की तरफ आ रहा है, जैसे ही बात जांबवंत को पता चला तो तुरंत ही जांबवंत ने क्या किया, प्रभु राम के पास आकर बोला कि प्रभु एक राक्षस जो है वो लंका से निकल के हमारे शिविर की तरफ आ रहा है, हमको कोई हानि पहुंचाए, हम क्या करते, हमारे गुप्तचरों से अभी पता चला है, आपका आदेश होता हम उसको मार डालते हैं। तो प्रभु राम ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, एक अकेला है ना, कोई बात नहीं, आने दो, देख लेंगे कौन राक्षस है, आने तो दो। और जब विभीषण आए, तो महान भक्त थे भगवान के, विभीषण जब आए भगवान रामचंद्र के पास तो तुरंत ही भगवान राम के शरण को ग्रहण कर लिया उन्होंने, तुरंत ही प्रणाम किया, उनके चरण को पकड़ लिए, प्रभु हमारे हमको स्वीकार करिए। और आप विचार करिए कि जैसे ही वो शरण को ग्रहण किया भगवान रामचंद्र के विभीषण ने, तुरंत ही भगवान रामचंद्र ने उनको पकड़कर, विभीषण को पकड़ा और पकड़ के बोला कि उठो लंकेश। विचार करिए, केवल प्रणाम करने मात्र से प्रभु राम ने उसको लंका का राजा बना दिया। अभी तो लंका का राजा कौन था, रावण था, लेकिन विभीषण जिसको रावण ने लात मार दिया था और प्रभु राम के शरण में आया और प्रणाम करने मात्र से प्रभु ने उनको क्या बना दिया, उठो लंकेश बोल दिया। और इस बात को सुनकर जांबवंत जी बोल पड़े, प्रभु आपने ये क्या कर दिया, अभी तो युद्ध बाकी है, अभी तो लंका पे चढ़ाई करना बाकी है, अभी तो रावण इतना बलशाली है, उसके साथ युद्ध करना है, अभी आपने इसको लंका का राजा बना दिया। तो प्रभु ने बोला कि जांबवंत चिंता मत करो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए मैंने इसको वचन दिया हो ना, लंका का राजा बना दिया हो ना, कोई बात नहीं, लंका में हम आक्रमण करेंगे, करते करते हम हार भी गए तो कोई बात नहीं, हार गए तो क्या, लंका नहीं मिलेगा ना, हमारे पास इसको अयोध्या का राजा बना दूंगा मैं। देखिए प्रभु राम भगवान के चरण में जब हम शरण ग्रहण करते हैं, हमको विश्वास होना चाहिए, ये सारे चीजें हमको पता करके हमको ये होना चाहिए, उनके चरणों के प्रति प्रीति बढ़ना चाहिए, विश्वास बढ़ना चाहिए। आज के समय में समस्या सबसे बड़ा यही बन चुका है कि हमको विश्वास नहीं है कि अवश्य रचिए कृष्ण, कृष्ण हमारा पालन करेंगे, बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो विभीषण को भगवान ने बोला कि कोई बात नहीं है, लंका नहीं प्राप्त हुआ तो मैं इसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। और प्रभुपाद जी एक जगह पे तात्पर्य में लिखते हैं इस बात को कि देखिए रावण ने लंका को प्राप्त करने के लिए कितना घोर तपस्या किया था, शिव जी का तपस्या किया था, अपने एक एक मस्तक को काट काट के रावण नीचे गिरा रहा था, नौ दशा दशानंद दस सर थे रावण के, तो दस सर में से नौ सर काट के गिरा दिया नीचे रावण ने, लेकिन दसवां सर जब काटने जा रहा था शिव जी प्रकट हो गए। इतना घोर तपस्या करने के बाद जब शिव जी प्रकट हुए तो उसको सोने की लंका प्रदान किया रावण को, कितना घोर तपस्या करने के बाद, लेकिन वही लंका विभीषण ने केवल प्रणाम करने मात्र से प्राप्त कर लिया अवलंका। विचार करिए, भगवान के शरणागत होने से, उनके चरण में शरण ग्रहण करने से कितना लाभ है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी एक भगवान कितने कृपालु है, उनके शरण को ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरा चिन्ह, ये तीसरा, आगे तीसरा जो चिन्ह है भगवान के चरण कमल में, राइट साइड में राइट वाले चरण में, वह है छत्र का, छाता का, दिखा चक्र, जो चक्र में उसके नीचे छाता है, थोड़ा सा प्रिंट आउट बराबर नहीं आया लेकिन उसके नीचे छाता है छत्र। तो ये छत्र इंगित करता है कि भगवान इस भौतिक संसार में हमारे जितने भी भौतिक तकलीफ है, दुख और तकलीफ, इससे हमारी रक्षा करते हैं। क्योंकि इस संसार में अगर हम हैं तो हमको जान लेना चाहिए कि संसार जो है दुखों का आलय है। भगवान भगवदगीता में बोल चुके हैं, दुख आलयम अशाश्वतम, ये संसार है दुखों का आलय है। स्टैम्प मार दिया, संसार को बनाने वाला व्यक्ति क्या कर दिया, स्टैम्प मार चुका है, दुख आलयम अशाश्वतम, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सुख को ढूंढ रहे हैं। पुनः पुनः चर्वित चरवणानम, हम क्या कर रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं, है ना। वो मार्केट में गन्ना का जूस मिलता है ना, है ना, कितना बार लगाता है, एक ग्लास से ये है तो एक गन्ना का कुछ टुकड़ा लेता है, उसको कितनी बार डालता है आप देखिए, कितनी बार डालता है। और आप जूस पीने गए, वो गन्ने को डाल डाल के एकदम सूखा कर देता है उसको, बिल्कुल रस निकल जाता है। और आपने गन्ने का जूस मिला मांगा, लेकिन उसने क्या किया, उस कचड़े को उठाकर आपको दे दिया, बोला कि चबाओ और इसमें से जूस निकालो, हाँ इसको इसमें से रस पान करो, हो सकता है कभी संभव, लेकिन हम यही कर रहे हैं। पुनः पुनः चर्वित चरवाना, जहां पे सुख नहीं लिखा है, दुख ही दुख है, लेकिन हम वहां पे सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इस संसार में दुखों दुख देखिए, कोई चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, इस संसार में दुखों से बच नहीं सकता है, वो दुख तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि भक्तों के जीवन में ना दुख बढ़ जाता है, भक्ति मार्ग में कृष्ण भावनामृत में आने के बाद भक्तों के जीवन में दुख समस्याएं बढ़ जाती है, 10 गुना बढ़ जाता है। अभी आप लोग उठ के भागेगा मत, अरे ये कौन से जगह गलत जगह आ गए, हैं समस्याएं बढ़ जाती है। हम तो मंदिर आते हैं अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए, ये क्या बोल रहे हैं, समस्याएं बढ़ जाती है। हाँ, इस बात का प्रमाण स्वयं भगवान भागवतम में कहते हैं कि अगर मैं किसके ऊपर कृपा करता हूं, कहते तस्याम अनुग्रहणामि, तस्याम अनुग्रहणामि, कि मैं किसी के ऊपर अगर अनुग्रह करता हूं तो सबसे पहला, मतलब सबसे पहला अगर कृपा करता हूं किसी के ऊपर तो सबसे पहला क्या करता हूं मैं, तो कहते हैं कि हरिस्ते तद धनम सनय, सबसे पहला काम करता हूं तो उसका धन छीन लेता हूं। बताइए गलत जगह पे आ गए कि नहीं आ गए, गलत जगह पे आए नहीं। अरे भगवान बोलते हैं जो हमारा शरण ग्रहण करता है, सबसे पहला अगर मैं उसके ऊपर कृपा करता हूं, हाँ उनके ऊपर अनुग्रह करता हूं, तो पहला अनुग्रह क्या होता है, उसके धन को छीन लेता हूं, ये पहला कृपा। प्रश्न, दूसरा कृपा क्या है फिर, तो दूसरा कृपा यह है, भगवान बोलते हैं कि एक तो सबसे पहला तो उसका धन छीनता हूं, और दूसरा कृपा जब करता हूं तो उसके फैमिली से झगड़ा करा देता हूं। मैं रॉन्ग देने आया कि नहीं है, नहीं है फिर भी उसके फैमिली में झगड़ा करा देता हूं, किसी का एक दूसरे से जमता नहीं है। कृष्ण भावना में आने के बाद होता है ना, देखते हैं ना फैमिली वाले हमको पसंद करना भूल जाते हैं, मतलब वो बोलते हैं क्या तिलक धारण करके जाता है, पंडित बन गया, क्या क्या बोलते हैं, आजू बाजू वाले बोलते हैं, बड़ी समस्या है। मंदिर, अभी आज संडे है तो जाएगा मंदिर, पहले इतना अच्छा खासा था, हमारे साथ बाहर में चलता था, वहां पे डांस करते थे, क्या क्या करते थे, इंजॉय करते थे, अभी ये जाएगा हरे कृष्ण वाला बन गया, है कि नहीं अनुभव ना रामचंद्र को। तो ये दूसरी कृपा है, तीसरी भी बता दो, नहीं सुनना अभी। तो भगवान बोलते हैं कि जब मैं पहली कृपा करता हूं, अनुग्रह करता हूं उसके ऊपर, तो उसके धन को छीन लेता हूं, और दूसरी कृपा करता हूं तो उसके समाज परिवार फैमिली से उसकी आसक्ति खत्म कर देता हूं, लेकिन अगर फिर भी वो हमारे भजन में निष्ठ रहता है, भजन करता रहता है, तो उसके बाद जब तीसरी कृपा करता हूं तो उसको वैकुंठ प्रदान करता हूं, ये तीसरी कृपा है भगवान की। लेकिन पहला और दूसरा ये हमारा क्या है, एग्जाम है, याद रखिए। आप ये मत डरिए कि भगवान कृपा करके हमारे धन को, सोचिए भगवान अगर कृपा करके धन को भी छीन लिए ना, तो भी आप एक संसार में एक राजा की तरह जिएंगे, क्यों, क्योंकि भगवान ने कृपा किया है, इस बात को ध्यान रखिए। धन छीन लिए मतलब ये नहीं आपने उनका शरण ग्रहण किया तो पहला ही बात मैंने बता दिया कि जाओ, मतलब आपको भूखा नहीं रखेंगे। तो भगवान कृपा की बहुत बड़ी बड़ी बात है, भले जो हमारा धन छीन लिया लेकिन भगवान ने छीना ना, तो भगवान ने छीना तो आपको थोड़ी ना रोड पे घुमाने के सोने के लिए छोड़ देंगे। ये है तीसरी कृपा भगवान की। ये दोनों चीजों में जब हम स्थित रहते हैं फिर भी हम उनकी भजन करने रहते हैं, उनके शरणागत रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमको वैकुंठ प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो ये छत्र है ना, एक्चुअली तो ये जो छत्र है, मैं छत्र की ही बात कर रहा था ना, तो छत्र है तो इससे क्या करते हैं, मैं बोल रहा था कि दुखालय में शाश्वतम, तो दुखालय में शाश्वतम मतलब संसार दुखों का आलय है, तो हम कितना भी ढूंढ ले इसमें सुख तो मिलने वाला नहीं है, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो कुछ भी हो, लेकिन उसको दुख तो झेलना ही पड़ेगा, दुख आएगा। लेकिन ये दुख कैसा हो जाता है कि ये दुख को सहन करने का एक भक्त को जो है ना, वो बाहर के लोग जैसे दुख को सहन करते हैं उनको तकलीफ होता है, वो भक्तों को नहीं होता है उस प्रकार से। कैसे है, मान लीजिए उदाहरण के रूप में कि जैसे कि बहुत घोर बारिश हो रहा है, घर से दो व्यक्ति निकले है ना, दोनों को बहुत जरूरी काम है घर से निकले है ना, और बाहर इतना भयंकर बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो अभी एक ने छाता लेके निकला और एक बिना छाता का निकला। सोचिए बारिश हो रहा है, दोनों के लिए बारिश हो रहा है ना, बारिश दोनों के लिए हो रहा है, लेकिन जिसके पास छाता है उसको बारिश का तकलीफ नहीं होगा और जिसके पास छाता नहीं है उसको बारिश का तकलीफ होगा। तो ऐसा ही जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान के चरण को स्वीकार कर लेते हैं, ये जो छत्र है इनको भौतिक जो समस्या है उससे रक्षा करता है, उसका अनुभव हमको नहीं होने देता है। बात ये है समस्याएं आएंगी लेकिन ये जो छत्र है ना, वो अगर भगवान का शरण ग्रहण किए तो ये छत्र है जो छाया रखता है और हमको उस समस्याओं को अनुभव फीलिंग नहीं आने देता है। इस प्रकार से तो जो भगवान का शरण ग्रहण करता है, तो इस प्रकार से ये जो छत्र है, वैसे ये जो छत्र है एक्चुअली यह दिखाता है कि अगर हम भगवान की शरण करते हैं, भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो ये छत्र एक्चुअली केवल भौतिक समस्याओं को ही दूर करने के लिए नहीं बल्कि वो हमेशा हमारे साथ चलता है। हाँ, जैसे देखिए ना महाराजा लोग, राजा महाराजा लोग होते हैं ना, उनके साथ में हमेशा छत्र चलता है कि नहीं, है ना, ये प्रतीक करता है कि वो महाराजा है ना, राजा है वो, उसके साथ में हमेशा एक व्यक्ति छाया, बारिश हो धूप हो न हो हमेशा उसके साथ छत्र हमेशा चलता है। इसी प्रकार से जो भगवान का जो शरण ग्रहण करता है ये छत्र जो है ना हमेशा उसके साथ रहता है। इसलिए देखिए इस भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है हाँ, उनको राजा बोल सकते हैं, है ना, राजा ही है ना, राजा है वो, लेकिन हमारे मंदिर में हमारे कोई सन्यासी आ जाते तो हम उनको क्या बोलते हैं, महाराजा है? वो राजा है, पूरे भारत को संभाल रहा है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन एक सन्यासी जो आते हैं उनको क्या कहते हैं, महाराज है? महाराज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं महाराज, क्योंकि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, तो भारत के एक राजा हुए ना, ब्रह्मांड के जो मालिक है उनके शरण ग्रहण किए हैं, इसलिए उनको महाराज कहते हैं, उनको महाराज संबोधन देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो छत्र है ना, कहने का तात्पर्य है कि वो हमेशा साथ में रहता है उस भक्त के, अगर वो भगवान का चरण को ग्रहण करता है तो। और चौथा जो चिन्ह है भगवान के दाएं पैर दाएं चरण में, वह है ऊर्ध्व रेखा। देखिए लिखा हुआ है ऊर्ध्व रेखा, एरो भी मारा वाले कि वो रेखा एक्चुअली प्रिंट आउट में आया नहीं है आया है, थोड़ा से दिखेगा, ध्यान से दिखेंगे तो एक रेखा दिखेगा, वो रेखा जो है ना वो तीर से लेके चक्रम का जो सी है ना वहां तक आया हुआ है वो रेखा, तो रेखा उसको ऊर्ध्व रेखा बोलते हैं। तो जो कृष्ण के जो चरणों का जो ध्यान करता है तो कभी भी वो उस नीचे के लोकों में नहीं जाता है, ऊर्ध्व ऊपर के लोकों में जाता है, ये बात वहां ये चिन्ह से ही प्रदर्शित होता है। भगवान भगवदगीता में कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्तोस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुड़ वित्तिष्ठा तमो अधो गच्छति तामसा। जो सत्व गुण में होता है, जो शुद्ध सत्व में होता है उसको ऊर्ध्वम गच्छति सत्तोस्ता। तो ये जो ऊर्ध्व रेखा है भगवान के चरणों में, यह इस बात का प्रतीक है कि अगर भगवान का जो हम शरण ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हमको ऊर्ध्व ऊपर के लोकों में हम जाएंगे। है ना, हमारा अधोगति नहीं होगा, नीचे के लोगों में नहीं जाएंगे। और जो पांचवा, इसके बाद पांचवा जो चिन्ह है वह है कमल का चिन्ह। आप लोगों ने दर्शन किया आज जगन्नाथ जी का? किया? आज भगवान कौन से हार पहने हुए हैं? पूरा कमल का हार पहने हुए भगवान। कमल बहुत प्रिय है भगवान को। कमल, कमल चरण मुख कमल, मुख की तुलना कमल से किया गया भगवान का। आज कमल ही कमल, पता नहीं कल एक भक्त एक गोनी भर के कमल देके गए, इधर से कोई तालाब से उन्होंने स्वयं थोड़ा और एक गोनी भर के देके गए थे कल शाम को। तो कमल, एक कमल का जो चिन्ह है ना, भक्तों के मन में प्रेम का लोभ जी को जागृत कराता है। ये जो कमल चिन्ह है भगवान के चरणों में जो कमल है, वो भक्तों के मन में लोभ, प्रेम का लोभ उत्पन्न कराता है। जैसे कि भौरा कमल के ऊपर, भौरा क्या करता है, बहुत दूर दूर से कहां कहां से उड़ के आता है, वो कमल के पराग को पाना चाहता है। हाँ, उड़ के कमल के पंखुड़ियों पे जाके उसके पराग को, उसके रस को चूसता है। तो प्रभुपाद जी ना इन भौरों का, ऐसे भौरों की तुलना ना ये सारे भक्तों से किया है प्रभुपाद जी ने। कि जो भक्त लोग होते हैं ना, वो दूर दूर से कहां कहां से आते हैं और भगवान के चरण में बैठ के, भगवान के आश्रय में बैठ के भगवान के गुण कीर्तन कथा को करते हैं दूर दूर से आके, है ना। प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं। तो ये कमल, ये भौरे का जो है तुलना प्रभुपाद जी भक्तों के साथ करते हैं कि भक्तों को इस भौरे की दिशा होना चाहिए, वो पराग को प्राप्त करता है। ऐसे ही भगवान के चरण, भगवान के आश्रय में आकर हमको भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन उनका कथा करना चाहिए, सबको संग में बैठकर। तो इस प्रकार से लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग निकट होते हैं, लेकिन भौरे की इसलिए तुलना की गई है क्योंकि भौरे जो है ना दूर दूर से आते हैं, उड़ते उड़ते ढूंढते हैं वो कमल कहाँ पे है, वो ढूंढते हैं और ढूंढ के जाके उसके पराग को प्राप्त करते हैं। तो देखिए आप लोग कितने कितने दूर दूर से आए हुए सब लोग, लेकिन कुछ लोग नजदीक आजू बाजू रहते हैं, बाजू में ही रहते हैं, मेरे जैसे बाजू में ही रहते हैं, लेकिन वो नहीं आते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे लोग की तुलना प्रभुपाद जी मेढक से करते हैं। मेढक है ना, मेढक क्या है, उस कमल के नीचे ही रहता है, तो पानी में मेढक कमल के नीचे ही रहता है, लेकिन कभी ऊपर उठ के नहीं आते उधर, हाँ, उस पराग को प्राप्त करने का चेष्टा कभी भी नहीं करता है। इसलिए प्रभुपाद जी नजदीक लोगों को जो नहीं आते हैं उनको मेढक से तुलना करते हैं, और जो दूर दूर से भक्त लोग आते हैं उनको भौरे के साथ तुलना करते हैं। वो किधर भी वो ढूंढी लेते हैं जगह और भक्तों के आश्रय में बैठ के, भगवान के चरण में बैठ के उनकी कथा कीर्तन को सुनते ही सुनते हैं। और विशेष करके ये जो कमल है ना, हमेशा देखें लक्ष्मी जी के साथ में रहता है, कमल हमेशा लक्ष्मी जी के हाथ में कमल रहता है। तो इस बात को बताने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी कमल साथ में रहता है तो लक्ष्मी जी लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। तो लक्ष्मी का नाम है तो फिर वो उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है। तो चरण जो उनके आश्रय को जो ग्रहण करता है, निश्चित रूप से लक्ष्मी उनके साथ में रहते हैं। हम क्या करते हैं, लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान को, विष्णु को भूल जाते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। तो जो चरण भगवान के स्वीकार कर लिया उसको ऑटोमेटिक ये सारी चीजें प्राप्त होता है। और छठा जो चिन्ह है भगवान के दाएं में जो चरण में चार, छठा चिन्ह है वो ध्वज का चिन्ह है। ध्वज देखिए, ध्वज, तो यह चिन्ह ध्वज किसका प्रतीक है, ध्वज विजय का प्रतीक है, है ना। तो भगवान का जब हम शरण को ग्रहण करते हैं तो ध्वज किसका, विजय का प्रतीक है। उस भक्त के जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी वो फेल नहीं होगा, हमेशा सक्सेस होगा, हमेशा विजय प्राप्त होगा, विजयी होगा हमेशा, अगर वो भगवान के चरण को स्वीकार कर लिया तो। ये ध्वजा जो है विजय का प्रतीक है, सदैव विजयी रहेगा। लेकिन अगर कृष्ण किसी के जीवन में नहीं है, कृष्ण को जीवन से निकाल दिया, कृष्ण को अपने जीवन में नहीं रखा, तो निश्चित रूप से उसको असफलता ही असफलता मिलेगी। तो ये प्रमाण है, उदाहरण है कि हम जब देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण इस धराधाम से अपनी लीला समाप्त करके वो निकल गए, जब जा रहे थे निकल गए, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज को कुछ तो अपशकुन, कुछ इस प्रकार से उनको आभास हुआ। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा कि जाओ कृष्ण का जो है पता करके आओ कैसे है वो, द्वारका में हस्तिनापुर से उनको द्वारका भेजे कि जाओ कृष्ण का पता करके आओ कि कैसे है वो, उनका हाल चाल पूछ के आओ। तो अर्जुन निकल गया द्वारका, लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि रास्ते में जंगल के रास्ते से जा रहे थे, जंगल के रास्ते में कुछ बच्चों के साथ भील लोग के साथ अर्जुन का कुछ तो बहस हो गया और युद्ध हो गया उन लोग के साथ। छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उन छोटे छोटे बच्चों ने अर्जुन को परास्त कर दिया, युद्ध में हरा दिया। अर्जुन आश्चर्य रह गया, मैं गांडीवधारी, हाँ कितना बड़ा योद्धा था, कितना बड़ा धनुर्धर था अर्जुन, लेकिन इन कुछ छोटे छोटे बच्चों से हार गया। लेकिन उसके बाद जब वो पहुंचा द्वारका में, पता चला कि अभी कृष्ण नहीं है, कृष्ण चले गए धराधाम से, तो अर्जुन समझ गया कि जब कृष्ण जीवन से निकल गए तो जितनी भी शक्तियां थी मेरी सब खत्म। कृष्ण जब थे जीवन में तो निश्चित रूप से ये सारे चीजें थी, है ना। कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थनाओं में इस बात को बहुत वर्णन करते हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन में दुख ही दुख दीजिए ना, दुख को मांगते। सोचिए हम कभी भी ऐसा भगवान से नहीं मांगते हैं कि हाँ भगवान हमको दुख दीजिए हमारे जीवन में, कभी मांगते हैं? कभी नहीं। कुंती महारानी जिसका जिसने स्थान भागवत में स्थान प्राप्त किया है, कुंती महारानी भागवत में उनकी स्तुतियों का जब वर्णन करते हैं तो वहां पे कुंती महारानी दुखों को मांगती है कि हे प्रभु हमारे जीवन में दुख ही दुख दिए, क्योंकि जब दुख था हमारे जीवन में तो आप हमारे साथ में थे, लेकिन अभी दुख हमारे जीवन में नहीं है तो आप चले गए। हस्तिनापुर छोड़ के भगवान कब गए? जब इन लोग के जीवन से दुख निकल गया तब चले गए द्वारका, तो इसलिए दुख ही दुख मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भगवान कृष्ण अगर जीवन में नहीं है, भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु नहीं बना के रखा, भगवान कृष्ण को सेंट्रल पॉइंट में नहीं रखे, तो निश्चित रूप से अपने जीवन में नहीं रखे तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी विजय नहीं होगा, असफलता ही प्राप्त होगा उसको। तो ये ध्वज जो है विजय का प्रतीक है, कभी भी वो व्यक्ति जो है असफल नहीं होता है, हमेशा सक्सेस होता है। अभी सातवां हम पहुंच पाएंगे 20 मिनट में। सातवां जो चिन्ह है भगवान के दाएं चरण में वो है अंकुश, अंकुशम, प्रिंट आउट में अंकुशम, वहां पे अंकुश। अंकुश क्या है सब जानते हैं? हाथी को कंट्रोल करने के लिए महावत अपने पास रखता है ना। महावत हाथी को कंट्रोल करने के लिए अपने पास रखता है। हाथी इतना बड़ा विशाल काय जीव, पशु इतना विशाल काय पशु हो, इसकी तुलना चेतन महाप्रभु ही करते हैं। इसकी उपमा हाथी की तुलना चेतन महाप्रभु उपमा देते हुए कहते हैं कि ये जो वैष्णव अपराध है ना, ये हाथी के पागल हाथी के समान है। वैष्णव अपराध उठे हाथी मारो, ये जो वैष्णव अपराध है ना ये हाथी के समान है, पागल हाथी के समान। जिस प्रकार से पागल हाथी जो है, एक हाथी जो है कितना बलवान होता है, वो चाहे तो कितना सारा चीजें तहस नहस एक मिनट में कर सकता है, लेकिन पागल वैष्णव अपराध की जब बात की है तो बोलते पागल हाथी के, मदोमस्त हाथी के तुलना करते हैं वैष्णव अपराध का। कि सोचिए कि एक हाथी कितना बलवान होता है, तो एक मदोमस्त पागल हाथी कितना बलशाली रहेगा, क्या क्या कर देगा। तो ऐसे हाथी को सोचिए कि एक 6 फुट का आदमी उसके ऊपर बैठ के 2 फीट का अंकुश लेके उसको कंट्रोल करता है, उस अंकुश से लेके उस हाथी को कंट्रोल करता है एक महावत, एक व्यक्ति। अभी हाथी का दिमाग सबका कभी तो उसको उठा के कभी भी मार सकता है, लेकिन विचार करिए उसके हाथ में जो वो इंस्ट्रूमेंट छोटा सा है ना, वो अंकुश के कारण इतने विशाल का है, इतना बलशाली हाथी को क्या करता है अपने कंट्रोल में रखता है। तो ये हाथी की तुलना हमारे मन से किया गया है, हाथी की तुलना हमारे मन से किया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो हमारे साथ है ना हमारा मन। शास्त्रों में कहा गया है मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोचे बांधाय विषया संगे निर्मुक्ता विषया मनः, कि मन जो होता है ना व्यक्ति को, मन एवं मनुष्यानाम जो मनुष्य का जो मन होता है ना, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोचे, वो बंधन का भी कारण बनता है और मोक्ष का भी कारण बनता है। अगर सही जगह पे लगाए भगवान के चरण में तो मोक्ष का कारण बनता है, लेकिन गलत जगह पे लगाए तो हमको अधोगति को भी प्राप्त कर। तो मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोचे बांधाय विषया संगे, वो विषयों के साथ हमको विषयों के साथ बांध भी सकता है और निर्मुक्त विषय बना और विषयों से हमको मुक्ति भी दे सकता है। तो ये जो हाथी है ये हमारे मन के समान तुलना किया गया है। तो भगवान के चरण जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तो भगवान के जो शरणागत होते हैं तो भगवान के चरणों में जो जो अंकुश है ना ये हमारे मन को कंट्रोल करने में हमको मदद करता है, मन को कंट्रोल रखता है, मन को सही जगह पे लगाता है। जब हम उनके तो निश्चित हमको कुछ अलग प्रयास नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक उनके जो चरण को स्वीकार किया आपने, उनके चरण शरणागत हुए, तो ये जो अंकुश है ना ऑटोमेटिक हमारे इस अंकुश से ऑटोमेटिक हमारा मन जो है कंट्रोल हो जाता है। और मन जब कंट्रोल रहे तो सब कुछ अच्छा रहे, मन जब गड़बड़ तो समझ लो कितना बड़ा क्लेश, क्या क्या झगड़ा है, वो मारपीट क्या क्या होता है। तो इस प्रकार से ये अंकुश जो है इंगित करता है भगवान के चरणों में जो है कि ये हमारे मन को कंट्रोल करता है, हमारे मन रूपी जो मन रूपी हाथी है इसको कंट्रोल करता है अगर उनका शरण को लेंगे। और आठवां जो चिन्ह है वह है वज्र का चिन्ह, उसमें संस्कृत में पवि लिखा है, PAVI लिखा हुआ है ना पवि, वो वज्र है। आठवां जो चिन्ह है भगवान के दाहिने चरण में वह है वज्र का। ये वज्र जो है देवराज इंद्र के पास, जो वज्र है देवराज इंद्र के पास वज्र, वो कहां से प्राप्त हुआ है, ददीसी ऋषि के कृपा से है, ददीसी ऋषि के शरीर से वो निर्माण किया गया वज्र है। तो ये वज्र यह इंगित करता है, वज्र का जो चिन्ह है यह इंगित करता है कि अगर हम भगवान का शरण को ग्रहण किए, भगवान के चरणों को स्वीकार किए, तो हम इंद्र के समान बलशाली बन सकते हैं, इंद्र जैसे देवी देवताओं के गुण हमारे अंदर आ सकते हैं ऑटोमेटिक। भगवान कृष्ण भगवान है करके इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवतम में हुआ है, इते चांस कलाह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत पुष्टि करता है कि भगवान कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण भगवान है ना। लेकिन उसी श्लोक में आगे बोला गया है कि इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, लेकिन वो कृष्ण क्या करते हैं, इंद्र इत्यादि लोगों को जब कभी अपने पद से भ्रमित हो जाते हैं, उनकी पद छीन लिया जाता है, तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, हर युग में आके वह इंद्र की रक्षा करते हैं, है ना। तो ये जो वज्र है जो है ना, यह दर्शाता है कि अगर हम भगवान के चरण को ग्रहण करते हैं तो ये जो देवी देवताओं के जो गुण है ना वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाते हैं, वो महान बन जाता है ना, बड़े बड़े कार्य करने लगता है, बड़े शक्तिवान बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है, बड़ी बड़ी सेवाएं करने लगता है वो, जैसे मंदिर बनाना इत्यादि करने बड़ी बड़ी सेवाएं, सारे शक्ति शक्ति प्राप्त कर लेता है वो। तो और उसके बाद भगवान के दाएं चरण में नौवां जो चरण चिन्ह है वह है अष्टकोण का। देखिये कोणाष्टकम सबसे नीचे लिखा हुआ ना, कोणाष्टकम है ना अष्टकोण, ये चिन्ह दर्शाता है, प्रदर्शित करता है कि भगवान का जब हम शरण को ग्रहण करते हैं तो भगवान हमको आठों दिशाओं से रक्षा करते हैं, आठों दिशाओं से रक्षा करते हैं, बल्कि यही नहीं उसको आठों दिशाओं का जो राज्य है, जो सुख संपत्ति उसको ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है। मैं डिटेल नहीं करता हूं फिर, ठीक है, एक एक करके पूरा कर लेता हूं। उसके बाद भगवान के दाएं चरण में जो दसवां चिन्ह है वह है स्वास्तिक का। देखिए अष्टकोणम के चारों बाजू स्वास्तिक का बनाया गया ना, स्वास्तिकम। देखिए तो ये जो स्वास्तिक है ये आप सब लोग जानते हैं कि ये मंगल का प्रतीक है, सब लोग जानते हैं मंगल का प्रतीक है स्वास्तिक, है ना, स्वास्तिक सब लोग, पहले अभी तो ये भी जा रहा है धीरे धीरे से, पहले सब लोग अपने घर अपने द्वार पे इस प्रकार से शुभ लाभ लिखते थे, वेलकम लिखते थे, सुस्वागतम लिखते थे, ये सारे चीजें लोग करते थे, क्योंकि ये जो प्रति ये स्वास्तिक है जो ना ये अमंगल को दूर करता है, मंगल का प्रतीक है स्वास्तिक, इसलिए सब लोग अपने अपने घरों के दरवाजे पे निश्चित रूप से बनाते थे। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी हो गई कि आप गेट पे जाओ तो लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, बड़ी समस्या है, कुत्तों से सावधान लिखा रहता है, डू नॉट डिस्टर्ब मत करो, ये सारे वर्ड अभी तो आ चुके हैं। एक बार मैं भिलवाड़ा में हम लोग नगर संकीर्तन का कुछ पंपलेट बांट रहे थे प्रोग्राम का, तो मैं जा रहा था तो गेट पे लिखा हुआ था, बड़े बड़े बोर्ड मारे रहते हैं गेट पे, कुत्तों से सावधान, और बड़ा भयंकर कुत्ता भी उधर फोटो भी लगा रहता है। तो मेरे साथ में जो भक्त थे वो बोलते प्रभु जी इधर कुत्तों से सावधान लिखा है लेकिन कुत्ता दिख नहीं रहा है किधर। मैं बोला अंदर खोलोगे ना, अंदर जितने लोग हैं सब कुत्ते ही हैं, अब खोलना मत नहीं तो कहाँ जाएंगे। तो ये सारे चीजें आ गया। लेकिन एक्चुअली हमारी वैदिक सभ्यता हमारी क्या बताते हैं कि हमको घर घर के द्वार पे ना ये स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए, जिससे अमंगल दूर रहता है, मंगल ही मंगल होता है। रात को चैन भरी नींद सो सकते हैं, है ना, कुत्तों से सावधान, लेके थोड़ी ना चैन भरी नींद सो सकते हैं। तो ये प्रतीक है अमंगल का, अमंगल को दूर करता है, मंगल को प्रदान करता है। तो ये जो स्वास्तिक जो चिन्ह है, कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का जो चरणाश्रित है वह उसके जीवन में कभी भी अमंगल नहीं आता है, मंगल ही मंगल होता है। और भगवान के दाए चरण में जो 11वां चरण चिन्ह है, जो दाए में अंतिम जो चरण चिन्ह है वह क्या है, जांबू, मतलब जामुन। जामुन कोई खाया है? जामुन जानते हैं, जामुन का फल है, सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, बहुत विशेष चीज है। भगवान ऐसी ऐसी चीज वस्तुएं थोड़ी ना अपने चरण में रखेंगे, है कि नहीं। जामुन फल बहुत विशेष, एक्चुअली जामुन जो है ना बारिश के सीजन में होता है ना, और उस समय ग्रहण करना चाहिए। एक्चुअली अमृत माना गया, अमृत जामुन जो है ना। तो भगवान के चरणों में जामुन का जो चिन्ह है यह प्रतीक कराता है, एक्चुअली ये स्वर्ग का फल है, जामुन स्वर्ग का फल है। स्वर्ग घूमना है, 2 मिनट स्वर्ग घूमते हैं उसके बाद वापस आते हैं। तो ये स्वर्ग, स्वर्ग में होता है फल। एक्चुअली स्वर्ग में 3 नदियां बहती हैं, स्वर्ग में 3 नदी बहता है। एक नदी है आम के रस का, और दूसरा है जामुन के रस का, और तीसरा है ऐश्वर्य की नदी बहती है। हाँ, तो आम का, बड़े बड़े आम होते हैं स्वर्ग में, बहुत बड़े बड़े, हाथी इतने बड़े बड़े आम होते हैं, और उसमें गुठली नहीं होता है। हाँ, सत्य बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उतनी वहां पे इतनी सुख सुविधा है स्वर्ग में कि बड़े बड़े पेड़ है और बड़े बड़े उसमें फल लगते हैं, और उसमें गुठली नहीं होता है। हाँ, आम के, और पका हुआ, और वो इतने पेड़ है वहां पे कि वो गिरता रहता है। हाँ, आम, और 12 महीने होता है ना, कोई आम के सीजन में केवल नहीं, 12 महीने होता है वहां पे, और बार बार वो गिरता रहता है, पक्के गिरता रहता है, और नीचे फट के वो क्या करता है, वो नदी बन जाता है, आम जूस का नदी बन जाता है। और देवताओं को जब भी ड्रिंक करना रहता है ना, हाँ, जो उनको जब एनर्जी चाहिए ना, वो क्या करते हैं, ग्लास लेके जाते हैं, उसमें ढोते और पी लेते हैं। ये जो सोम रस की बात की गई है ना, ये यही रस है। लोगों के माइंड में गलत धारणा बैठ चुकी है कि सोम रस मतलब शराब, ये गलत धारणा है। सोम रस जो पीने की बात की गई है, तो स्वर्ग के, स्वर्ग में जो सोम रस है ना, वही यही आम का जूस है, कोई और नहीं, कुछ और नहीं है, ये आम का जूस है। एनर्जी ड्रिंक, हाँ, इस भाषा में बोले एनर्जी ड्रिंक, वो एनर्जी प्राप्त करने के लिए उनको जब भी लगता है ऐसा कि अभी एनर्जी डाउन है, तो ग्लास लेके जाके डुबो के पी लेते हैं, ना, कितना अच्छा है ना। दूसरा जो ये जामुन, जामुन की नदी है ना, सेम वैसा ही, इतने ही पेड़ और इतने बड़े बड़े जामुन होते हैं, और उसमें कोई गुठली नहीं होता है, और वो गिरता है और जामुन का नदी बन जाता है, जामुन का नदी। लेकिन इस जामुन की नदी में एक और विशेषता है कि जब वो बहने लगती है ना, जब सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर, उस रस के ऊपर पड़ता है ना, वो क्या होता है, जम जाता है, जम के वो सोना बन जाता है। और उसको, उस सोने को कहा गया है, उस सोने को कहा गया है जामुनत सोना, उसका नाम है स्वर्ग में। सोचिए कितना बड़ा ऐश्वर्य है स्वर्ग में, है ना, सोने की नदी, आम जूस का नदी, सोम रस की नदी, कितना कितना अच्छी बात है ना, स्वर्ग जाना मतलब कितना सब कुछ आसानी से, हम जिसके लिए गधा मजदूरी कर रहे हैं, बड़े आसानी से वो स्वर्ग में प्राप्त होता है कि नहीं। प्रश्न है, अभी इतने हम जो अभी आधुनिक चीजें यूज करें, वो भी स्वर्ग में मिलता है क्या? हाँ मिलता है, ऐश्वर्य की नदी है, वहां पे कुछ खरीदना नहीं पड़ता है। आपको क्या चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, मोबाइल चाहिए, क्या चाहिए, कौन सी वैरायटी से, कौन सी कंपनी का, सारा चीजें उधर अवेलेबल है, केवल क्या उठाकर डिलीवरी करना, कोई खरीदना नहीं है। क्या चाहिए, जो भी चाहिए उठा कर लाओ, यूज करो, बहुत ऐश्वर्य है स्वर्ग में। और ये जो स्वर्ग का जो जामुन फल है ना, ये भगवान के चरणों में है, है ना। लेकिन स्वर्ग कितना अच्छा जगह है ना, लेकिन कहते हैं कि जो भक्त लोग आते हैं ना, वो स्वर्ग जाना ही नहीं चाहते। क्यों पता नहीं जाता है, जाने? छिड़े पुण्य मृत लोके विसंती, जब पुण्य जब छिन्न हो गया ना, खत्म हो गया ना, उसको नीचे आना पड़ता है। और वो भक्त लोग जो बुद्धिमान होते हैं ना, वो करना ही नहीं चाहते। आप विचार करिए कि कोई करोड़पति है, और अचानक वो रोडपति हो गया तो उसको कितना टेंशन हो जाएगा, है कि नहीं? रोडपति हो गया तो उसको इतना टेंशन हो जाएगा कि उसको शायद हार्ट अटैक आ जाए, खत्म हो जाए। करोड़पति व्यक्ति अचानक उसको रोडपति बना दिया जाए तो कितना दुख होगा उसको। तो सोचिए आप स्वर्ग में जाएंगे, सुख तो भोगेंगे, लेकिन जब पुण्य जब छीण होगा तो वापस इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो क्यों इस मृत्यु लोक में वापस तकलीफ झेलने के लिए आना है? इसलिए भक्त लोग क्या कहते हैं, भाई स्वर्ग नहीं चाहिए, क्या है, सीधा भगवत धाम जाओ, जहां यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मोहः, जहां से कभी रिटर्न आना ही नहीं पड़े, है उस सुख को प्राप्त करे। इस प्रकार से स्वर्ग में तो बहुत सारे सुख संपत्ति है, लेकिन वापस आना पड़ेगा करके भक्त लोग कभी भी स्वर्ग के पीछे नहीं पड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो अंतिम भगवान के राइट साइड में जो ये चिन्ह है जामुन का, यह दर्शाता है और एक चीज और है, ये जामुन जो है ना, एक्चुअली हम लोग जिस लोक में निवास कर रहे हैं ना, इसको एक जम्बू द्वीप के अंतर्गत आता है ना। तो जम्बू द्वीप के निवासी जो लोग है ना, ये जामुन का फल क्या दर्शाता है, चिन्ह क्या दर्शाता है कि जो जम्बू द्वीप में रहने वाले जो लोग है ना, एक्चुअली में उनका सही जो गति है ना, वो भगवान के चरणों में ही होना चाहिए। जम्बू द्वीप के निवासियों को भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, ये चिन्ह इंगित करता है, क्योंकि हम जम्बू द्वीप के अंतर्गत में रह रहे हैं। तो जम्बू द्वीप के निवासियों को इस प्रकार से भगवान के चरण का आश्रय ग्रहण करें, इस बात को इंगित करता है जामुन का फल। ठीक है, तो एक दाया खत्म हुआ, 10 मिनट में बाया भी खत्म कर देते हैं, है ना, कि रहने दे 10 मिनट का। तो भगवान के अभी बाएं चरण में 9 बजे जल्दी करना है, चालू रखना है। तो भगवान के बाएं चरण में जो चिन्ह है, सबसे पहला वह है शंख का चिन्ह, शंख का चिन्ह है। तो शंख की महिमा बहुत अपार है। शंख जब बजता है ना, पता है बहुत सारे अमंगल ऐसे ही दूर हो जाते हैं। जैसे सुबह शंख बजता है ना, तो जितने भी अमंगल चीजें हैं, आसुरिक वृत्तियां हैं, सब लोग भाग जाते हैं शंख का आवाज सुन के, है ना। जब ही कृष्ण ने जब शंख बजाया महाभारत के युद्ध में, सबके हृदय विदीर्ण हो गए, है ना। तो अमंगल ऐसे ही सब डर जाते हैं, जितने भी जो भगवान के भक्त नहीं है उस शंख से डर के भाग जाएंगे, है ना। वो भगवान के भक्तों के लिए वो आनंद प्रदान करने वाला है, और जो भगवान के भक्त नहीं है और उनको डर पैदा करता है, उसको दूर भगा देता है। तो शंख जो है भगवान के जो चरण में ये जो शंख है ना, विशेष करके, और इसके अंदर जो जल भरा जाता है, जैसे आरती के समय में शंख में जल भर के भगवान का को अर्पण ये करते हैं, आरती करते हैं ना, तो उस शंख के अंदर जो जल है, एक्चुअली उसकी महिमा बहुत ज्यादा है। तो इस शंख के अंदर जो जल है, यह जो है ना, इस संसार का जो दावाग्नि, हम सुबह सुबह क्या गाते हैं, संसार दावान ललिढलोका, इस संसार दावाग्नि के समान है, जलती हुई अग्नि के समान है संसार, है जिसमें हम धधक रहे हैं, जल रहे हैं, जिसमें हम सुबह आरती का शुरुआत ही इसलिए दावाग्नि से होता है। सुबह का मंगला जब अटेंड करेंगे ना, तो संसार जो दावाग्नि के समान है, तो इस जो दावाग्नि है संसार में, जो अग्नि लगा हुआ है, ये जो शंख का जो जल है ना, उसको छिड़कने से संसार की जो अग्नि है वो बुझ जाती है भक्त के ऊपर, ये विशेषता है। तो जो पानी छिड़का जाता है ना, तो आप ये सोचते हैं कि अरे बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, ऐसा नहीं, वो हमारे जो संसार का जो दावाग्नि है ना, उसको बुझाने का काम ये शंख के अंदर का जो जल है वो करता है, है ना। तो इस प्रकार से भगवान के ये लेफ्ट चरण में जो शंख है, उसकी ये इंगित करता है। और दूसरा जो है भगवान के लेफ्ट चरण में दूसरा जो चिन्ह है, वह है समकेंद्रीय वृत्त। एक देखिए वहां पे खम लिखा हुआ, खम खम खमन नहीं खम लिखा हुआ है, वो है समकेंद्रीय वृत्त, एक गोलाकार है ना, यह गोलाकार है, आकाश का प्रतीक है। एक्चुअली ये इंगित करता है कि भगवान के चरण में जो गोला वृत्त है, समकेंद्रित वृत्त है, या कि संसार पूरा भगवान के चरण कमलों में ही है, संसार जो है भगवान के चरण कमलों से बाहर नहीं है। और विशेष करके सम केंद्रीय वृत्त इस गोलाकार में ना बीच में एक बिंदी है जो कि प्रिंट आउट में नहीं आया हुआ है ना, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ है ना इसलिए नहीं आया है। तो उसमें एक बिंदी है, वो बिंदी यह दर्शाता है कि जो भगवान का जो शरण को ग्रहण कर लेता है उसको, जैसे कि अभी जीवन का एक भक्त के जीवन का उद्देश्य क्या होता है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना अंतिम लक्ष्य यही है ना। भगवान कृष्ण के उस महारास की लीलाओं में, उस रास लीला में प्रवेश करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना ये जीवन का अंतिम उद्देश्य है। लेकिन भगवान के जो चरणों का ध्यान करता है, उनके चरण को जो अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो ये जो गोला, ये केंद्रीय वृत्त जो है ना, ये दर्शाता है कि ये रास वृत्त के दृश्य को दर्शाता है। बीच में जो बिंदु है कृष्ण है और उसके चारों बाजू जो है गोपियां हैं, वो रास नृत्य का प्रतीक है। तो जो भगवान का चरण को स्वीकार कर लिया है वो उसका ध्यान, उसको अलग से गोपियों की लीलाओं का ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए भगवान प्रभुपाद जी हमेशा भगवान के चरण के बारे में बोलते थे, भगवान का चरण का आश्रय ग्रहण करो। कभी भी ये नहीं बोलते थे डायरेक्ट भगवान के दसवें स्कंद में जाकर गोपियों की लीलाओं को पढ़ो, हाँ, क्योंकि उनको मालूम था कि वो दसवें स्कंद तक पहुंचते पहुंचते ना उसके चरणों में इतना प्रीति बढ़ जाएगा कि ऑटोमेटिक जो वो गोपियों के जो रास लीला है, महारास है, उसका दर्शन ऑटोमेटिक उसको प्राप्त होने लगेगा। ये प्रभुपाद जी को पता था, इसलिए उन्होंने क्या बोला, भागवतम को शुरुआत से पढ़ो, हाँ, वैसे डायरेक्ट छलांग मत मारो, हाँ, रास लीला में डायरेक्ट प्रवेश मत करो। अगर डायरेक्ट छलांग मारेगा वो व्यक्ति तो निश्चित रूप से फंस जाएगा भौतिक संसार में, है ना, उसको भौतिक ले लेगा वो। लेकिन जब पहले स्कंद से पढ़ते 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 वहां तक, जब नवे स्कंद तक अगर पढ़ लिए तो निश्चित रूप से भगवान के चरण कमलों में आसक्ति आ जाएगा। और ये जो गोला वृत्त, ये केंद्रीय वृत्त जो आकार है, ये रास वृत्त का प्रतीक है, उसको ऑटोमेटिक वो रास अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं, उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। तो ये सम केंद्रीय दूसरा जो चिन्ह है लेफ्ट में, और उसके बाद तीसरा जो चिन्ह है भगवान के लेफ्ट चरण में वो है धनुष का चिन्ह। धनुष, धनुष मतलब ये आपत्तियों को दूर, आपत्तियों को दूर भगाने के लिए तीर और धनुष का होता है ना, वो प्रतीक है। धनुष मतलब आपत्तियों को दूर करने के लिए, क्लेश को दूर करने के लिए। तो जो चरणाश्रित भक्त है उनके जीवन में सारे जो आपत्तियां है वो यूं ऐसे ही खत्म हो जाता है। और विशेष करके दूसरा बहुत हम भक्तों के लिए ये शिक्षा प्रद विषय चीजें है कि जो ये धनुष है ना, ये अहंकार का प्रतीक है एक्चुअली, इसलिए तो भगवान राम ने तोड़ा उसको, अहंकार का प्रतीक है। तो ये धनुष भगवान के चरणों का आश्रित तो जो लोग हैं, जो आश्रय लिए हुए हैं, तो ये धनुष यह इंगित करता है कि उसके उस भक्त के अंदर जो अहंकार है उस अहंकार का नाश हो जाता है। बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली संसार में ये अहंकार। देखिए दुखालय तो है ही, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो ये अहंकार है मैं और मेरा का ना, व्यक्ति को उठने ही नहीं दे रहा है एक्चुअली। ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मैंने किया, ये मेरा है, मेरा मेरा, ये मैं और मेरे की जो भावना है ना, व्यक्ति को ऊपर नहीं उठने दे रहा है एक्चुअली। सबसे बड़ी ये अहंकार है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्नते। अहंकार के विमूढ़ होकर व्यक्ति इस प्रकार का कार्य में लगा रहता है और वो ऊपर उठ नहीं पाता है ना। तो इस अहंकार को, जो ये अहंकार है बहुत डेंजरस है हमारे अंदर, ये अहंकार इसको अगर नाश करना है तो निश्चित रूप से भगवान के जब चरणाश्रित हो जाएंगे, उनको सरेंडर कर लेंगे, तो ये धनुष इस बात का प्रतीक है, ये चिन्ह जो धनुष है इस बात का प्रतीक है कि हमारे अंदर जो ये अहंकार रूपी बड़ा असुर बैठा हुआ है इसका दमन यूं हो जाएगा। ये धनुष इस बात का प्रतीक है। और चौथा लेफ्ट में चौथा जो चिन्ह है वह है गाय का खुर, गोपाष्पदम, गोष्पादम वहां पे लिखा हुआ संस्कृत में गोष्पादम। ये जो है ना गाय के चरण का जो खुर होता है ना, गाय का खुर उसका चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, जैसे कि बारिश के समय में ना जब गाय चलती है ना, तो जो गीला जमीन रहता है ना, तो वहां उसका जब पैर पड़ता है तो वहां पे चिन्ह हो जाता है, वो यह चिन्ह है। ये चिन्ह यह दर्शाता है कि ये संसार जो है महासागर के समान है ना। संसार इसको पार पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हर एक शास्त्रों में संसार के बारे में वर्णन है कि महासागर के समान है, इसको पाना, पार पाना बहुत मुश्किल है इस संसार को। लेकिन जो भगवान कृष्ण के भगवान के शरण को ग्रहण कर लेता है, उनकी भक्ति करता है, उनके शरण आश्रित हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये महासागर जो है ना, इस गाय के खुर के अंदर जो चिन्ह बना हुआ है उसके अंदर जो जल रहता है ना, वो महासागर इतना ही हो जाता है उसके लिए, तो कितना आसानी से उसको पार कर जाएंगे, है ना। गाय के चरण के जो चिन्ह के अंदर जो पानी है उसको पार करने में तो कोई समस्या नहीं, तो ये महासागर जो है ना उसके लिए उतना ही हो जाता है। तो ये चिन्ह यह इंगित करता है कि उसके लिए बहुत इस महासागर को पार पा जाना बहुत आसान हो जाता है उस भक्त के लिए जिसने भगवान के चरण को प्राप्त कर लिया है। और उसके बाद पांचवा चिन्ह भगवान के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट चिन्ह चरण में जो पांचवा जो चिन्ह है वह है कुंभ का। क्या लिखा हुआ इधर, कलशम, कुंभ कलशम लिखा हुआ ना, कलशम, तो एक कुंभ, कुंभ का चिन्ह है। और एक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि अभी अभी हमने स्वर्ग का दर्शन किया है ना, वहां पे कितना अच्छा सोमरस था, अमृत था, उसका पान से वंचित रह गए ना, अरे क्या मालूम अभी भगवत धाम चले जाएंगे तो ये सोमरस की प्राप्ति होगा कि नहीं होगा पता नहीं है ना, अरे ठीक है मरने के बाद कौन क्या देखा है मालूम नहीं, अरे चला ये सोमरस का थोड़ा पान कर ही लिए होते। तो एक कलश, एक्चुअली एक कलश कोई साधारण कलश नहीं है, अमृत कलश है। तो जो भगवान का जो शरण करने शरण ग्रहण कर लिया है तो उसको चिंता करने की विषय नहीं, स्वर्ग जाने की चिंता कोई है नहीं, और उसको निश्चित रूप से ये अमृत को पान हो जाता है, अमृत की प्राप्ति हो जाती है उसको, ये चिन्ह यह दर्शाता है। और सब तो छोड़ो, मान लो इस बात को कोई बोलेगा कि अरे प्रभु बाद में फिर क्या है, शरीर छोड़ने के बाद कौन कहाँ जाता है, क्या देखने को, क्या अमृत कहाँ, अमृत का पान अभी कभी मिल जाता है वो ज्यादा अच्छा है, लोग इंस्टेंट फल चाहते हैं एक्चुअली, है ना। तो इंस्टेंट फल यही है कि हर संडे आप आते रहिए इस्कॉन मंदिर में और भगवान का खीर रूपी अमृत प्राप्त होगा आप लोगों को, है ना, ये इंस्टेंट फल है। आज बना है कि नहीं बना है वो मालूम नहीं मुझे, लेकिन अक्सर बनता है, है ना, अक्सर खीर की प्राप्ति होता है, अमृत है वो, भगवान के चढ़ा हुआ जो खीर है वो अमृत के समान है, तो निश्चित रूप से मिलेगा। प्रभुपाद जी बार बार बताते, देखिए देवता समुद्र मंथन में अमृत कहां से प्राप्त हुआ, समुद्र मंथन के समय अमृत की प्राप्ति हुई, देवता और दानव दोनों सेम मेहनत किए, दोनों खूब मेहनत किए, वो मेहनत में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन अमृत किसको मिला, देवताओं को मिला, असुरों को नहीं मिला, है ना, वो लंबी कथा है, है ना। तो हम जब भक्ति करते हैं, हम जब भगवान के शरण को ग्रहण करते हैं, तो अमृत ऐसे ही यूं ही मिल जाता है हमको, अमृत यूं ही मिल जाता है, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद छठा, भगवान के लेफ्ट चरण में जो छठा चिन्ह है वह त्रिकोण चिन्ह है। देखिए त्रिकोण, त्रिकोण चिन्ह है ना, ये त्रिकोण त्रिताप को दर्शाता है। दो मिनट लेट हुआ अभी, बस ज्यादा नहीं, दो और बचा है, पूरा कर लो, चलेगा, कौन कौन ज्यादा पूरा कर ले, कोई नहीं, नीचे वाला ठीक है। तो ये त्रिकोण भगवान के लेफ्ट चरण में जो त्रिकोण का जो चिन्ह है ये त्रिताप को दर्शाता है। संसार में, संसार के जितने भी दुख है, इस संसार में जितने भी दुख, हम दुख जिसको बोलते हैं, जो भी माइंड में आता है हम बोलते ना दुख है दुख है, अलग अलग लोगों का अलग अलग धारणाएं होती है। तो इस संसार में जितने दुख है ना वो तीन भागों में विभाजित किया गया है ना, आदि भौतिक दुख, त्रिताप जिसको बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में, इसको त्रिताप बोलते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक, इन तीन के अंदर सारे दुख समाये हुए है, सारे दुख है इसके अंदर। तो आदि भौतिक दो दुख है, मतलब आदि भौतिक मतलब अपने लोगों से जो प्राप्त दुख है ना, आज हमारे घर में ही हमारे दुश्मन है, पैर खींचने वाले है ना, हमारे आजू बाजू वाले ही हमारे दुश्मन है। देखिए आज की बात नहीं, बड़े बड़े राजा हुआ जिनके पतन हुआ, वो हारे, उनकी मृत्यु हुआ, उसका कहीं ना कहीं कारण आप ढूंढेंगे ना तो उनके ही सगे संबंधी, उनके ही निकट के, उनके ही फ्रेंड, उनके ही बाजू वाला निकले हैं, है ना। तो संसार ही ऐसा है। तो ये आदि भौतिक मतलब जो हमारे लोगों, हमारे जो हमको अपना समझते हैं ना, जो जिसको हम अपना समझते हैं, मेरा है ना, मैं और मेरा की जो बात कर रहा था मैं ना, अपना समझते हैं ना, अपने लोगों से जो दुख प्राप्त होता है उसको आदि भौतिक दुख बोलते हैं, है कि नहीं। कितना बड़ा दुख है, घर घर में कितने दिन भर गधा मजदूरी करके आएगा ऑफिस से, और रात को पत्नी कुछ और बोलेगी, बोलेगी ये वो रात को दूसरा टेंशन, घर में बच्चे कुछ और बोलेंगे, कुछ इस प्रकार का इस सारे जितने भी अपने लोगों लोगों से अपने लोगों से प्राप्त होने वाला जो दुख है, जिसको हम अपना मानते हैं, अपना तो है नहीं, अपना नहीं मानेंगे तो कोई समस्या ही नहीं है, हम अपना मान के बैठे हुए हैं, जो अपना मानते हैं उनसे जो दुख प्राप्त होता है हमको, उसको आदि भौतिक दुख बोला गया है, ठीक है। और दूसरा दूसरा जो है आज दैविक, चलिए अपने लोग तो दुख दिए ही, अभी आज दैविक मतलब देवताओं से मिलने वाला दुख अपने लोग तो दे ही रहे हैं और साथ साथ में देवता लोग भी कृपा कर रहे हैं, है कि नहीं। ये संसार दुखालय में, इसलिए सब लोग की नजर ऐसे ही है, दुख तो रहेगा ही रहेगा हमेशा, कमी हो रहा है तो दुख देंगे, ला देंगे देवता लोग, कमी नहीं होने देंगे, इसलिए इस संसार से निकलना बुद्धिमत्ता है ना, इसलिए इधर रहना बुद्धिमत्ता नहीं है। तो आदि दैविक दुख मतलब ये देवताओं से प्राप्त होने वाला दुख है, देवताओं से, क्या भूकंप आ गया, पृथ्वी हिल गया, बिल्डिंग गिर गया, भूकंप आ गया, क्या भूचाल, क्या क्या आप जो कि सुन रहे हैं आजकल न्यूज, ये वो में क्या क्या हो रहा है सभी, है ना। तो प्रकृति के द्वारा, देवताओं के द्वारा जो मिलने वाला दुख है उसको आदि दैविक दुख बोलते हैं, ये दूसरा ना, त्रिताप में से ये दूसरा। और तीसरा जो दुख है आदि आध्यात्मिक, ये दुख एक तो हमारे अपनों ने दे दिया, दूसरा देवताओं की कृपा हो गई, और तीसरा जो ये आध्यात्मिक है वो क्या है, हमारे मन से जो दुख प्राप्त होता है ये और डेंजरस है एक्चुअली, है ना। हमारे मन में जब दुख होता है ना, व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है, अपने आप को क्यों मारता है, सोचिए, जब भी वो मानसिक तनाव में एकदम त्रस्त हो जाता है, अपने आप को ये कर देता है, मतलब मन जब उसका विचलित हो जाता है, दुख हो जाता है मन के अंदर, जब एकदम गहराई रूप में वो दुख छा लेता है, तब व्यक्ति अपने आप को मार डालता है, सबसे डेंजरस है ना। हाँ, लोग दुख देते हैं ऐसे करते, उसको बचने का बचाने का कुछ तो तरीका है, लेकिन अपने आप का ये जो मन का मानसिक जो दुख है ना व्यक्ति का, बहुत डेंजरस है। तो ये त्रिताप जो है, मैं इस बात को बता रहा हूं कि ये जो भगवान के चरणों में त्रिकोण है, ये तीन प्रकार के ताप को दर्शाता है। तो भगवान के चरण का आश्रय ग्रहण करने वाला जो भक्त है, ये तीन तापों से मुक्त हो जाता है, ये विशेषता है, बहुत बड़ी बात है ना, ये तीन तापों का उसके ऊपर प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है भगवान के चरण कमलों का शरण को ग्रहण करता है, और भगवान के चरण, भगवान के बाएं चरण में जो सातवां जो चिन्ह है वो ऊर्ध्व चंद्र, देखिए एक चंद्र बनाया हुआ है, चंद्र का चिन्ह है चरण में, मिला क्या लिखा है, चंद्र, चंद्र, तो चंद्र है जो है ना वो यह प्रतीक करता है। देखिए चंद्र को कौन धारण करते हैं, शिव जी धारण करते हैं, तो चंद्र इस बात का प्रतीक है कि अगर आप भगवान के चरण को ग्रहण करते हैं तो शिव जी जैसे महान व्यक्ति बन सकते हैं, महान भक्त बन सकते हैं, उनके चरण आश्रित होने वाले लोग मतलब उनके गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभु, कितने बड़े शिव जी का स्थान है, बड़े शिव जी का कितना बड़ा स्थान है, तो उस स्थान को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर भगवान के चरणों के आश्रित हो जाएंगे तो। और उसके बाद भगवान के बाएं चरण में आठवां जो चिन्ह है ये अंतिम है, चिंता मत करिए, अंतिम जो चिन्ह है ये क्या है, मीन का चिन्ह है, मीन मतलब मछली, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोस्तिकम, संस्कृत में इसको प्रोस्तिकम बोलते हैं। तो ये मीन का जो चिन्ह है मतलब मछली का जो चिन्ह है क्या दर्शाता है, बहुत 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 महत्वपूर्ण ये चिन्ह जो दर्शाता है कि मछली, मछली देखिए मछली हमेशा रस में ही जीती है, वो विदाउट रस रह ही नहीं सकती है, मतलब हमेशा वो पानी में रहती है, आप पानी से उसको बाहर कर दीजिए क्या होगा, मर जाएगी, उसको रस, रस हमेशा रस चाहिए, है ना, कभी वो रस से दूर नहीं रह सकती है। तो ये बात हमको लास्ट में इस चिन्ह से यह दर्शाता है कि भगवान का चरण उन्हीं के पास रहता है जिनके पास रस होता है, रसिक, हाँ, पांच प्रकार के रस हैं, हाँ, कौन कौन से है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर रस, इन पांच रसों में से कोई अगर भगवान के चरणाश्रित होता है तब जाके उसको पूर्ण बेनिफिट मिलता है। मतलब रस जहां पे नहीं रहेगा वहां पे कृष्ण का चरण नहीं मिल सकता है उसको। तो जब तक यह रस हमारे हृदय में नहीं होगा तब तक कृष्ण का जो चरण है हमको प्राप्त नहीं होगा, है कि नहीं। कृष्ण का जब चरण प्राप्त हो जब हो जाता है हमको, हमारे हृदय में आ जाता है, तो निश्चित रूप से कृष्ण हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। ये प्रत्यय ऐसा नहीं कि कलयुग आ गया है अभी आदान प्रदान की समय खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। ऐसे कई सारे भक्त हुए जो आज इस कलयुग में जिनके साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं, है ना। भगवान के जब अवतारों की बात किया गया ना कि भगवान के कितने अवतार है, इस बात को जब ये निमि महाराज नव योगेंद्र से पूछते हैं भागवतम के 11वें स्कंद में कि भगवान के अवतारों के विषय में बताइए, तो वहां पे करभाजन ऋषि इस बात को बताते हैं, बताते हुए कहते हैं कि भगवान के अवतारों की हम गिनती कर ही नहीं सकते। जिस प्रकार से गंगा के जल में जो बालू के कण है उसको कभी गिन सकते हैं, कभी नहीं गिन सकते हैं। लेकिन मान लीजिए वो संभव हो जाए, है ना, वो गिन भी ले मान ले, लेकिन भगवान के जो अवतार है ना उसको अभी हम कभी भी गिनती नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ भागवतम के पहले स्कंद में 24 अवतारों का वर्णन हुआ है, भागवतम में कुछ मुख्य अवतारों का वर्णन हुआ, लेकिन असंख्य अवतार है भगवान के जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। तो असंख्य अवतार क्या क्या है, भक्तों के साथ ना आदान प्रदान करने का। भगवान कभी भी प्रकट होकर उस भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। हमें बोला ना आप कृष्ण के नाम पे, तो कृष्ण हमारे काम पे और हमारे साथ साथ में रहते हैं, है ना, हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। इसी कलयुग के आपके गुजरात का ही देख लीजिए, हमारे गुजरात में नरसिंह मेहता हुए, भगवान ने उनके साथ 52 बार उनको दर्शन दिया, 52 बार दर्शन दिया नरसिंह मेहता को, उनके साथ आदान प्रदान किया। ऐसा नहीं है कि हम शरणागत होंगे तो आज के समय में, अरे कलयुग है भाई, कलयुग में पता नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष उदाहरण कितने सारे आदमी मिलते हैं, सूरदास, हाँ सूरदास जी अंधे थे, है ना, अंधे थे सूरदास जी, और लेकिन भगवान के महान भक्त थे, हाँ उनको जानते हैं सब लोग, सूरदास जी को अंधे थे लेकिन महान भक्त थे भगवान के। उन्होंने 4000 पदों की रचना किया भगवान की प्रसन्नता का, भगवान के गुणगान के लिए 4000 पदों को लिखा उन्होंने, तो बहुत महान भक्त थे। एक दिन की घटना है कि सूरदास जी अपना भजन करके वह घर पे जा रहे थे, संध्या का समय था, भजन करके अपने कुटिया में जा रहे थे, और जाते समय वो अंधे थे अभी, धीरे 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 चल रहे थे, लेकिन वो रास्ता भटक गए। रास्ता जब भटक गए तो जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में थोड़ी ही दूर आगे खुला हुआ कुआं था, खुला हुआ कुआं था। अभी सूरदास जी जा रहे हैं, पैदल थे और अपना भगवान का नाम लेते हुए निकल रहे थे, और जैसे उस कुएं के पास पहुंचे बस अगला कदम रखते कि उस कुएं में गिर जाते, ऐसी स्थिति आ गया। उसी समय भगवान कृष्ण बालक के रूप में प्रकट होकर उस सूरदास जी का हाथ पकड़े और उसको तुरंत ही साइड से रास्ता दिखाकर आगे लेके गए, प्रकट हो गए भगवान कृष्ण, और बालक ने पकड़ गए लेके गए। तुरंत ही सूरदास जी ने पूछा कि तुम कौन हो, बोले कि माता ने किसी काम से भेजा हुआ था और मैं इस रास्ते से जा रहा था, आपको देखा कि आप अंधे हैं, आप रास्ता भटक गए और आप गिरने वाले थे करके, इसलिए मैंने आपको सोचा कि बचा ले, इसलिए मैंने आपका हाथ पकड़ा और आपको बचा लिया। और सूरदास जी पूछने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है और तुमको कौन, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुमको माँ ने भेजा है ना, तुम्हारे माता ने भेजा है कुछ काम के लिए ना, कौन है माता पिता तुम्हारे। इस प्रकार से प्रश्न सूरदास से पूछने लगे और भगवान ने देखा, क्योंकि झूठ कैसे सत्य व्रत कहलाते हैं ना, झूठ बोलेंगे और नीच, और भगवान के जो भक्त होते हैं ना भगवान उनके सामने टिक नहीं पाते एक्चुअली। जैसे कि रास लीला में हम देखेंगे कि भगवान छुपने लगे, रास नृत्य में सभी गोपियां ढूंढ रही हैं भगवान को, है ना, भगवान निकल गए, अप्रकट हो गए गोपियों के दृश्य, तभी तो गोपी गीत जो गाए हैं गोपियां ने उसी विरह में गोपी गीत गाया है। भगवान कृष्ण अप्रकट हो गए और अप्रकट होने के बाद उन्होंने क्या किया, चतुर्भुज नारायण के रूप में उधर प्रकट हो गए, प्रकट हो गए और गोपियां उस चतुर्भुज नारायण से पूछे क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है। लेकिन उस चतुर्भुज रूप का जो कृष्ण बोला, चतुर्भुज नारायण बोला नहीं नहीं मैं कृष्ण को नहीं देखा हूं, और गोपियां आगे चली जाती है। लेकिन जब श्रीमती राधा रानी वहां पे आती है तो ये जो कृष्ण का जो चार हाथ था ना, दो हाथ ऑटोमेटिक गल गया, निकल गया, उसका रियल रूप द्विभुज रूप प्रकट हो गया है। तो भक्तों के जो प्रेम है ना उसके आगे भगवान का बिल्कुल टिक नहीं पाते। कृष्ण ने देखा कि अभी ये पूछताछ करेगा और मैं टिक तो पाऊंगा नहीं, इसलिए हाथ को छुड़ा और तुरंत वहां से भाग निकले, तुरंत भाग निकले और सूरदास जी समझ गए कि आप कोई और नहीं, आप कृष्ण ही हो, स्वयं कृष्ण हो। और सूरदास ने एक पद को लिखा है कि हाथ छुड़ाकर जात हो निर्बल जानी मोहे, कि आपने आज तो हमको निर्बल समझा, ये अंधा है, इसको शक्ति नहीं है, आपने हाथ छुड़ा लिया और भाग गए। सूरदास जी कहते हैं तुरंत ही जो भाग रहे थे कृष्ण, उन्होंने एक पद की रचना किया कि हाथ छुड़ाकर जात हो निर्बल जाने, मुझे निर्बल जानकर आपने हाथ छुड़ाकर तो भाग गए, लेकिन हृदय हृदय छुड़ाकर जाए तो वीर, मैं आपको वीर मानूंगा तब जब आप हमारे हृदय से निकल कर दिखाइए। तो कृष्ण जो है ना भगवान, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो कृष्ण को अपने हृदय में बांध के रखते हैं। रामायण की वो घटना है ना, हनुमान जी चीर के दिखा देते हैं, है ना, वो लंबी कथा है, वो नहीं कहूंगा। तो इस प्रकार से तो आज भी प्रकट रूप में भगवान आप निश्चित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, गौर निताय के रूप में आप देखिए, आप अगर भगवान के शरणागत रहेंगे तो निश्चित रूप से गौर निताय की, भगवान स्वयं जो है चैतन्य महाप्रभु का छन्न अवतार है, कृष्ण का छन्न अवतार, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, भगवान के रूप में किस कलयुग के लिए तो आए हैं, कलयुग के लोगों के साथ ही आदान प्रदान करने के लिए आए हैं। इसलिए आप ये अनुभव कर सकते हैं कि जब भी हम कृष्ण भावना में जुड़े हैं तो निश्चित रूप से गौर निताई हमारी रक्षा करते हैं, एक कितने भक्तों का अनुभव है। तो इस प्रकार से कृष्ण राम चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के विशेष लोग हैं, किसी के भी हम शरण को ग्रहण करते हैं, विशेष करके इनके जो चरण हैं, इनके चरणों का जब ध्यान करते हैं, चरणों को अपने आप को समर्पित करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से उस प्रेम उस धाम को प्राप्त कर सकते हैं जो कि बहुत दुर्लभ है, लेकिन चरण का आश्रय प्रदान कर जैसे ही हम कर लेते हैं निश्चित रूप से हम इस प्रेम भक्ति को, इस प्रेम रस को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। क्षमा करिए 15 मिनट लेट हुआ, लेकिन विषय मैं सोचा था कंप्लीट कर लूं, फिर भी मैंने तेज किया कभी। हरे कृष्ण, थोड़ी देर बैठे, कुछ छोटा अनाउंसमेंट हो उसके बाद फिर आप लोग प्रसाद करें।
हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हम रमय प्राण प्रभु जी का हार्दिक अभिनंदन करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा। उन्होंने आज हमें भगवान के चरण कमलों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया, तो एक बार हम उनका हरे कृष्णा महामंत्र द्वारा हार्दिक स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भक्त इस क्लास में पहली बार आए हैं, कोई है ऐसा भक्त जो पहली बार आया हुआ है इस क्लास में, तो हम इन भक्तों का भी एक बार वेलकम करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।